मत्ती मत्ती अध्याय एक। इब्राहिम के वंशज दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली इस प्रकार है। इब्राहिम का पुत्र था इसहाक, और इसहाक का पुत्र हुआ याकूब। फिर याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा के बेटे थे फिरिस और जोरह। उनकी माँ का नाम तामार था। फिरिस हिस्त्रोन का पिता था। हिस्त्रोन राम का पिता था। राम अम्मीनादाब का पिता था। अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन का जन्म हुआ। सलमोन से बोअज का जन्म हुआ। बोअज की माँ का नाम राहब था। बोअज और रूथ से ओबेद पैदा हुआ। ओबेद ईशय का पिता था, और ईशय से राजा दाऊद पैदा हुआ। सुलेमान दाऊद का पुत्र था, जो उस स्त्री से जन्मा जो पहले उरियाह की पत्नी थी। सुलेमान रहबाम का पिता था, और रहबाम अबियाह का पिता था। अबियाह से आसा का जन्म हुआ, और आसा यहोशाफात का पिता बना। फिर यहोशाफात से योराम, और योराम से उज्जियाह का जन्म हुआ। उज्जियाह योताम का पिता था, और योताम आहाज का। फिर आहाज से हिजकियाह, और हिजकियाह से मनश्शीह का जन्म हुआ। मनश्शीह आमोन का पिता बना, और आमोन योशियाह का। फिर इसराइल के लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले जाते समय योशियाह से यकुन्याह और उसके भाइयों ने जन्म लिया। बेबीलोन में ले जाए जाने के बाद यकुन्याह शालतियेल का पिता बना, और फिर शालतियेल से जरुब्बाबिल, तथा जरुब्बाबिल से अबीहूद पैदा हुए। अबीहूद इल्याकिम का, और इल्याकिम अजोर का पिता बना। अजोर सदोक का पिता था। सदोक से अखीम, और अखीम से इलीहूद पैदा हुए। इलीहूद इलियाजार का पिता था, और इलियाजार मतान का। मतान याकूब का पिता बना, और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, जो मरियम का पति था। मरियम से यीशु का जन्म हुआ, जो मसीह कहलाया। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ियां हुई, और दाऊद से लेकर बंदी बनाकर बाबुल पहुंचाए जाने तक की 14 पीढ़ियां, तथा बंदी बनाकर बाबुल पहुंचाए जाने से मसीह के जन्म तक 14 पीढ़ियां और हुई। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। जब उसकी माता मरियम की यूसुफ के साथ सगाई हुई, तो विवाह होने से पहले ही पता चला कि वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती है, किंतु उसका भावी पति यूसुफ एक अच्छा व्यक्ति था, और इसे प्रकट करके लोगों में उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। इसलिए उसने निश्चय किया कि चुपके से वह सगाई तोड़ दे। किंतु जब वह इस बारे में सोच ही रहा था, सपने में उसके सामने प्रभु के दूत ने प्रकट होकर उससे कहा,
ओ दाऊद के पुत्र यूसुफ, मरियम को पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा।
यह सब कुछ इसलिए हुआ है कि प्रभु ने भविष्यवक्ता द्वारा जो कुछ कहा था पूरा हो।
सुनो, एक कुंवारी कन्या गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है।
जब यूसुफ नींद से जागा, तो उसने वही किया जिसे करने की प्रभु के दूत ने उसे आज्ञा दी थी। वह मरियम को ब्याह कर अपने घर ले आया, किंतु जब तक उसने पुत्र को जन्म नहीं दे दिया, वह उसके साथ नहीं सोया। यूसुफ ने बेटे का नाम यीशु रखा। मत्ती अध्याय दो। हेरोदेश जब राज कर रहा था, उन्हीं दिनों यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। कुछ ही समय बाद कुछ विद्वान जो सितारों का अध्ययन करते थे पूर्व से यरूशलेम आए। उन्होंने पूछा,
यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है?
हमने उसके सितारे को आकाश में देखा है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। हम उसकी आराधना करने आए हैं।
जब राजा हेरोदेस ने यह सुना तो वह बहुत बेचैन हुआ और उसके साथ यरूशलेम के दूसरे सभी लोग भी चिंता करने लगे। सो उसने यहूदी समाज के सभी प्रमुख याजकों और धर्मशास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना है। उन्होंने उसे बताया,
यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता द्वारा लिखा गया है कि ओ यहूदा की धरती पर स्थित बैतलहम, तू यहूदा के अधिकारियों में किसी प्रकार भी सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक शासक प्रकट होगा जो मेरे लोगों इज़राइल की देखभाल करेगा।
तब हेरोदेस ने सितारों का अध्ययन करने वाले उन विद्वानों को बुलाया और पूछा कि वह सितारा किस समय प्रकट हुआ था। फिर उसने उन्हें बैतलहम भेजा और कहा,
जाओ उस शिशु के बारे में अच्छी तरह से पता लगाओ और जब वह तुम्हें मिल जाए तो मुझे बताओ, ताकि मैं भी आकर उसकी उपासना कर सकूं।
फिर वे राजा की बात सुनकर चल दिए। वह सितारा भी जिसे आकाश में उन्होंने देखा था उनके आगे आगे जा रहा था। फिर जब वह स्थान आया जहां वह बालक था तो सितारा उसके ऊपर रुक गया। जब उन्होंने यह देखा तो वे बहुत आनंदित हुए। वे घर के भीतर गए और उन्होंने उसकी माता मरियम के साथ बालक के दर्शन किए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके उसकी उपासना की। फिर उन्होंने बहुमूल्य वस्तुओं की अपनी पिटारी खोली और सोना, लोबान और गंधरस के उपहार उसे अर्पित किए। किंतु परमेश्वर ने एक स्वप्न में उन्हें सावधान कर दिया कि वे वापस हेरोदेस के पास न जाएं। सो वे एक दूसरे मार्ग से अपने देश को लौट गए। जब वे चले गए तो यूसुफ को सपने में प्रभु के एक दूत ने प्रकट होकर कहा,
उठ, बालक और उसकी माँ को लेकर चुपके से मिस्र चला जा, और मैं जब तक तुझसे ना कहूँ वहीं ठहरना, क्योंकि हेरोदेश इस बालक को मरवा डालने के लिए ढूंढेगा।
सो यूसुफ खड़ा हुआ तथा बालक और उसकी माता को लेकर रात में ही मिस्र के लिए चल पड़ा। फिर हेरोदेस के मरने तक वह वहीं ठहरा रहा। यह इसलिए हुआ कि प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा जो कहा था पूरा हो सके।
मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बाहर आने को कहा।
हेरोदेस ने जब यह देखा कि सितारों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने उसके साथ चाल चली है तो वह आग बबूला हो उठा। उसने आज्ञा दी कि बैतलहम और उसके आसपास में 2 वर्ष के या उससे छोटे सभी बालकों की हत्या कर दी जाए। सितारों का अध्ययन करने वाले विद्वानों के बताए समय को आधार बनाकर तब भविष्यवक्ता यिर्मयाह द्वारा कहा गया यह वचन पूरा हुआ।
रामाह में दुख भरा एक शब्द सुना गया, शब्द रोने का, गहरे विलाप का था। राहेल अपने शिशुओं के लिए रोती थी, चाहती नहीं थी कोई उसे धीरज बंधाए, क्योंकि उसके तो सभी बालक मर चुके थे।
फिर हेरोदेस की मृत्यु के बाद मिस्र में यूसुफ के सपने में प्रभु का एक स्वर्ग दूत प्रकट हुआ और उससे बोला,
उठ, बालक और उसकी माँ को लेकर इसराइल की धरती पर चला जा, क्योंकि वे जो बालक को मार डालना चाहते थे मर चुके हैं।
तब यूसुफ खड़ा हुआ और बालक तथा उसकी माता को लेकर इज़राइल जा पहुंचा। किंतु जब यूसुफ ने यह सुना कि यहूदिया पर अपने पिता हेरोदेस के स्थान पर अर्खिलाउस राज कर रहा है तो वह वहां जाने से डर गया। किंतु सपने में परमेश्वर से आदेश पाकर वह गलील प्रदेश के लिए चल पड़ा और वहां नासरत नाम के नगर में घर बनाकर रहने लगा, ताकि भविष्यवक्ताओं द्वारा कहा गया वचन पूरा हो कि
वह नासरी कहलाएगा।
मती अध्याय 3। उन्हीं दिनों यहूदिया के बियाबान मरुस्थल में उपदेश देता हुआ बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना वहां आया। वह प्रचार करने लगा,
मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आने को है।
यह यूहन्ना वही है जिसके बारे में भविष्यवक्ता यशायाह ने चर्चा करते हुए कहा था,
जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो और उसके लिए राहें सीधी करो।
यूहन्ना के वस्त्र ऊंट की ऊन के बने थे और वह कमर पर चमड़े की पेटी बांधे था। टिड्डियां और जंगली शहद उसका भोजन था। उस समय यरूशलेम समूचे यहूदिया क्षेत्र और यर्दन नदी के आसपास के लोग उसके पास आ इकट्ठे हुए। उन्होंने अपने पापों को स्वीकार किया और यर्दन नदी में उन्हें उसके द्वारा बपतिस्मा दिया गया। जब उसने देखा कि बहुत से फरीसी और सदूकी उसके पास बपतिस्मा लेने आ रहे हैं, तो वह उनसे बोला,
ओ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेता दिया है कि तुम प्रभु के भावी क्रोध से बच निकलो? तुम्हें प्रमाण देना होगा कि तुम में वास्तव में मन फिराव हुआ है, और मत सोचो कि अपने आप से कहना ही काफी होगा कि हम इब्राहिम की संतान है। मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इब्राहिम के लिए इन पत्थरों से भी बच्चे पैदा करा सकता है। पेड़ों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा जा चुका है और हर वह पेड़ जो उत्तम फल नहीं देता काट गिराया जाएगा और फिर उसे आग में झोंक दिया जाएगा। मैं तो तुम्हें तुम्हारे मन फिराव के लिए जल से बपतिस्मा देता हूँ, किंतु वह जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे महान है। मैं तो उसके जूतों के तस्मे खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। उसके हाथों में उसका छाज है जिससे वह अनाज को भूसे से अलग करता है। अपने खलियान से वह साफ किए समस्त अनाज को उठा इकट्ठा कर कोठियों में भरेगा और भूसे को ऐसी आग में झोंक देगा जो कभी बुझाए नहीं बुझेगी।
उस समय यीशु गलील से चलकर यर्दन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, किंतु यूहन्ना ने यीशु को रोकने का यत्न करते हुए कहा,
मुझे तो स्वयं तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, फिर तू मेरे पास क्यों आया है?
उत्तर में यीशु ने उससे कहा,
अभी तो इसे इसी प्रकार होने दो, हमें जो परमेश्वर चाहता है उसे पूरा करने के लिए यही करना उचित है।
फिर उसने वैसा ही होने दिया और तब यीशु ने बपतिस्मा ले लिया। जैसे ही वह जल से बाहर निकला आकाश खुल गया। उसने परमेश्वर की आत्मा को एक कबूतर की तरह नीचे उतरते और अपने ऊपर आते देखा। तभी यह आकाशवाणी हुई,
यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं।
मत्ती अध्याय 4। फिर आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान के द्वारा उसे परखा जा सके। 40 दिन और 40 रात भूखा रहने के बाद जब उसे भूख बहुत सताने लगी तो उसे परखने वाला उसके पास आया और बोला,
यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कहो कि ये रोटियां बन जाएं।
यीशु ने उत्तर दिया,
शास्त्र में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता बल्कि वह प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है।
फिर शैतान उसे यरूशलेम के पवित्र नगर में ले गया। वहां मंदिर के सबसे ऊंची बुर्ज पर खड़ा करके उसने उससे कहा,
यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद पड़, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, वह तेरी देखभाल के लिए अपने दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पैरों में कोई पत्थर तक ना लगे।
यीशु ने उत्तर दिया,
किंतु शास्त्र यह भी कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर को परीक्षा में मत डाल।
फिर शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखाया। शैतान ने तब उससे कहा,
ये सभी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मेरे आगे झुके और मेरी उपासना करे।
फिर यीशु ने उससे कहा,
शैतान दूर हो, शास्त्र कहता है अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी की सेवा कर।
फिर शैतान उसे छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी देखभाल करने लगे। यीशु ने जब सुना कि यूहन्ना पकड़ा जा चुका है तो वह गलील लौट आया, परंतु वह नासरत में नहीं ठहरा और जाकर कफरनहूम में, जो जबुलून और नप्ताली के क्षेत्र में गलील की झील के पास था, रहने लगा। यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा जो कहा वो पूरा हो,
जबलून और नप्ताली के देश सागर के रास्ते पर यर्दन नदी के पश्चिम में गैर यहूदियों के देश गलील में जो लोग अंधेरे में जी रहे थे उन्होंने एक महान ज्योति देखी, और जो मृत्यु के छाया के देश में रहते थे उन पर ज्योति के प्रभात का एक प्रकाश फैला।
उस समय से यीशु ने सुसंदेश का प्रचार शुरू कर दिया,
मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है।
जब यीशु गलील की झील के पास से जा रहा था उसने दो भाइयों को देखा, शमौन जो पतरस कहलाया और उसका भाई अंद्रियास। वे झील में अपने जाल डाल रहे थे, वे मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा,
मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लोगों के लिए मछलियां पकड़ने के बजाय मनुष्य रूपी मछलियां कैसे पकड़ी जाती हैं।
उन्होंने तुरंत अपने जाल छोड़ दिए और उसके पीछे हो लिए। फिर वह वहां से आगे चल पड़ा और उसने देखा कि जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना अपने पिता के साथ नाव में बैठे अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं। यीशु ने उन्हें बुलाया और वे तत्काल नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे चल दिए। यीशु समूचे गलील क्षेत्र में यहूदी आराधनालयों में स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार का उपदेश देता और हर प्रकार के रोगों और संतापों को दूर करता घूमने लगा। समस्त सीरिया देश में उसका समाचार फैल गया, इसलिए लोग ऐसे सभी व्यक्तियों को जो संतापी थे या तरह तरह की बीमारियों और वेदनाओं से पीड़ित थे, जिन पर दुष्ट आत्माएं सवार थी, जिन्हें मिर्गी आती थी और जो लकवे के मारे थे, उसके पास लाने लगे। यीशु ने उन्हें चंगा किया। इसलिए गलील, दस नगर, यरूशलेम, यहूदिया और यर्दन नदी पार के लोगों की बड़ी बड़ी भीड़ उसका अनुसरण करने लगी। मत्ती अध्याय 5। यीशु ने जब यह बड़ी भीड़ देखी तो वह एक पहाड़ पर चला गया, वहां वह बैठ गया और उसके अनुयायी उसके पास आ गए। तब यीशु ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा,
धन्य है वे जो हृदय से दीन हैं, स्वर्ग का राज्य उनके लिए है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि परमेश्वर उन्हें सांत्वना देता है। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि यह पृथ्वी उन्हीं की है। धन्य है वे जो नीति के प्रति भूखे और प्यासे रहते हैं क्योंकि परमेश्वर उन्हें संतोष देगा, तृप्ति देगा। धन्य है वे जो दयालु हैं क्योंकि उन पर दया गगन से बरसेगी। धन्य है वे जो हृदय के शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो शांति के काम करते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो नीति के हित में यातनाएं भोगते हैं, स्वर्ग का राज्य उनके लिए ही है। और तुम भी धन्य हो क्योंकि जब लोग तुम्हारा अपमान करें, तुम्हें यातनाएं दें और मेरे लिए तुम्हारे विरोध में तरह तरह की झूठी बातें कहें, बस इसलिए कि तुम मेरे अनुयायी हो, तब तुम प्रसन्न रहना, आनंद से रहना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें इसका प्रतिफल मिलेगा। यह वैसा ही है जैसे तुमसे पहले के भविष्यवक्ताओं को लोगों ने सताया था। तुम समूची मानवता के लिए नमक हो, किंतु यदि नमक ही बेस्वाद हो जाए तो उसे फिर नमकीन नहीं बनाया जा सकता है, वह फिर किसी काम का नहीं रहेगा, केवल इसके कि उसे बाहर लोगों की ठोकरों में फेंक दिया जाए। तुम जगत के लिए प्रकाश हो, एक ऐसा नगर जो पहाड़ की चोटी पर बसा है छिपाए नहीं छिपाया जा सकता। लोग दिया जलाकर किसी बाल्टी के नीचे उसे नहीं रखते, बल्कि उसे दीवट पर रखा जाता है और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसे चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परम पिता की महिमा का बखान करें। यह मत सोचो कि मैं मूसा के धर्म नियम या भविष्यवक्ताओं के लिखे को नष्ट करने आया हूं। मैं उन्हें नष्ट करने नहीं, बल्कि उन्हें पूर्ण करने आया हूं। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि जब तक धरती और आकाश समाप्त नहीं हो जाते, मूसा की व्यवस्था का एक एक शब्द और एक एक अक्षर बना रहेगा। वह तब तक बना रहेगा जब तक वह पूरा नहीं हो लेता। इसलिए जो इन आदेशों में से किसी छोटे से छोटे को भी तोड़ता है और लोगों को भी वैसा ही करना सिखाता है, वह स्वर्ग के राज्य में कोई महत्व नहीं पाएगा। किंतु जो उन पर चलता है और दूसरों को उन पर चलने का उपदेश देता है, वह स्वर्ग के राज्य में महान समझा जाएगा। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि जब तक तुम व्यवस्था के उपदेशकों और फरीसियों से धर्म के आचरण में आगे ना निकल जाओ, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। तुम जानते हो कि हमारे पूर्वजों से कहा गया था, हत्या मत करो, और यदि कोई हत्या करता है तो उसे अदालत में उसका जवाब देना होगा। किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो व्यक्ति अपने भाई पर क्रोध करता है, उसे भी अदालत में इसके लिए उत्तर देना होगा, और जो कोई अपने भाई का अपमान करेगा, उसे सर्वोच्च संघ के सामने जवाब देना होगा। और यदि कोई अपने किसी बंधु से कहे, अरे असभ्य मूर्ख, तो नरक की आग के बीच उस पर इसकी जवाबदेही होगी। इसलिए यदि तू वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहा है और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कोई विरोध है, तो तू उपासना की भेंट को वहीं छोड़ दे और पहले जाकर अपने उस बंधु से सुलह कर और फिर आकर भेंट चढ़ा। तेरा शत्रु तुझे न्यायालय में ले जाता हुआ जब रास्ते में ही हो, तू झटपट उसे अपना मित्र बना ले। कहीं वह तुझे न्यायी को न सौंप दे और फिर न्यायी सिपाही को, जो तुझे जेल में डाल देगा। मैं तुझे सत्य बताता हूं, तू जेल से तब तक नहीं छूट पाएगा जब तक तू पाई पाई न चुका दे। तुम जानते हो कि यह कहा गया है, व्यभिचार मत करो। किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि यदि कोई किसी स्त्री को वासना की आंख से देखता है, तो वह अपने मन में पहले ही उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। इसलिए यदि तेरी दाहिनी आंख तुझसे पाप करवाए, तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह अच्छा है कि तेरे शरीर का कोई एक अंग नष्ट हो जाए, बजाय इसके कि तेरा सारा शरीर ही नरक में डाल दिया जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझसे पाप करवाए, तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह अच्छा है कि तेरे शरीर का एक अंग नष्ट हो जाए, बजाय इसके कि तेरा संपूर्ण शरीर ही नरक में चला जाए। कहा गया है, जब कोई अपनी पत्नी को तलाक देता है, तो उसे अपनी पत्नी को लिखित रूप में तलाक देना चाहिए। किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि हर वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी को तलाक देता है, यदि उसने यह तलाक उसके व्यभिचारी आचरण के कारण नहीं दिया है, तो जब वह दूसरा विवाह करती है, तो मानो वह व्यक्ति ही उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई स्त्री से विवाह रचाता है तो वह भी व्यभिचार करता है। तुमने यह भी सुना है कि हमारे पूर्वजों से कहा गया था, तू शपथ मत तोड़ बल्कि प्रभु से की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा कर। किंतु मैं तुझसे कहता हूं कि शपथ ले ही मत, स्वर्ग की शपथ मत ले, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। धरती की शपथ मत ले, क्योंकि यह उसकी पांव की चौकी है। यरूशलेम की शपथ मत ले, क्योंकि यह महासम्राट का नगर है। अपने सिर की शपथ भी मत ले, क्योंकि तू किसी एक बाल तक को सफेद या काला नहीं कर सकता है। यदि तू हां चाहता है तो केवल हां कह, और ना चाहता है तो केवल ना, क्योंकि इससे अधिक जो कुछ है वह शैतान से है। तुमने सुना है कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। किंतु मैं तुझसे कहता हूं कि किसी बुरे व्यक्ति का भी विरोध मत कर, बल्कि यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दे। यदि कोई तुझ पर मुकदमा चलाकर तेरा कुर्ता भी उतरवाना चाहे तो तू उसे अपना चोगा तक दे दे। यदि कोई तुझे एक मील चलाए तो तू उसके साथ दो मील चला जा। यदि कोई तुझसे कुछ मांगे तो उसे वह दे दे। जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मना मत कर। तुमने सुना है कहा गया है, तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर और शत्रु से घृणा कर। किंतु मैं कहता हूं अपने शत्रुओं से भी प्यार करो, जो तुम्हें यातनाएं देते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो, ताकि तुम स्वर्ग में रहने वाले अपने पिता की सिद्ध संतान बन सको, क्योंकि वह बुरों और भलों सब पर सूर्य का प्रकाश चमकाता है, पापियों और धर्मियों सब पर वर्षा कराता है। यह मैं इसलिए कहता हूं कि यदि तू उन्हीं से प्रेम करेगा जो तुझसे प्रेम करते हैं तो तुझे क्या फल मिलेगा? क्या ऐसा तो कर वसूल करने वाले भी नहीं करते? यदि तू अपने भाई बंधुओं का ही स्वागत करेगा तो तू औरों से अधिक क्या कर रहा है? क्या ऐसा तो विधर्मी भी नहीं करते? इसलिए परिपूर्ण बनो, वैसे ही जैसे तुम्हारा स्वर्ग पिता परिपूर्ण है।
मत्ती अध्याय 6।
सावधान रहो, परमेश्वर चाहता है उन कामों का लोगों के सामने दिखावा मत करो, नहीं तो तुम अपने परम पिता से जो स्वर्ग में है उसका प्रतिफल नहीं पाओगे। इसलिए जब तुम किसी दीन दुखी को दान देते हो तो उसका ढोल मत पीटो, जैसा कि आराधनालयों और गलियों में कपटी लोग औरों से प्रशंसा पाने के लिए करते हैं। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि उन्हें तो इसका पूरा फल पहले ही दिया जा चुका है। किंतु जब तू किसी दीन दुखी को देता है तो तेरा बायां हाथ न जान पाए कि तेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है, ताकि तेरा दान छिपा रहे। तेरा वह परम पिता जो तू छिपा कर करता है उसे भी देखता है, वह तुझे उसका प्रतिफल देगा। जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों की तरह मत करो, क्योंकि वे यहूदी आराधनालयों और गली के नुक्कड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना चाहते हैं, ताकि लोग उन्हें देख सके। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि उन्हें तो उसका फल पहले ही मिल चुका है। किंतु जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में चला जा और द्वार बंद करके गुप्त रूप से अपने परम पिता से प्रार्थना कर। फिर तेरा परम पिता जो तेरे छिप कर किए गए कर्मों को देखता है तुझे उनका प्रतिफल देगा। जब तुम प्रार्थना करते हो तो विधर्मियों की तरह यूं ही निरर्थक बातों को बार बार मत दोहराते रहो। वे तो यह सोचते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुन ली जाएगी, इसलिए उनके जैसे मत बनो, क्योंकि तुम्हारा परम पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। इसलिए इस प्रकार प्रार्थना करो, स्वर्ग धाम में हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र रहे, जगत में तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो, दिन प्रतिदिन का आहार तू आज हमें दे, अपराधों को क्षमा दान कर जैसे हमने अपने अपराधी क्षमा किए, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। यदि तुम लोगों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, किंतु यदि तुम लोगों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा परम पिता भी तुम्हारे पापों के लिए क्षमा नहीं देगा। जब तुम उपवास करो तो मुंह लटकाए कपटियों जैसे मत दिखो, क्योंकि वे तरह तरह से मुंह बनाते हैं ताकि वे लोगों को जताएं कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, उन्हें तो पहले ही उनका प्रतिफल मिल चुका है, किंतु जब तू उपवास रखे तो अपने सिर पर सुगंध मल और अपना मुंह धो, ताकि लोग यह न जाने कि तू उपवास कर रहा है, बल्कि तेरा परम पिता जिसे तू देख नहीं सकता देखे कि तू उपवास कर रहा है। तब तेरा परम पिता जो तेरे छिप कर किए गए सब कर्मों को देखता है तुझे उनका प्रतिफल देगा। अपने लिए धरती पर भंडार मत भरो, क्योंकि उसे कीड़े और जंग नष्ट कर देंगे। चोर सेंध लगाकर उसे चुरा सकते हैं, बल्कि अपने लिए स्वर्ग में भंडार भरो जहां उसे कीड़े या जंग नष्ट नहीं कर पाते और चोर भी वहां सेंध लगाकर उसे चुरा नहीं पाते। याद रखो, जहां तुम्हारा भंडार होगा वहीं तुम्हारा मन भी रहेगा। शरीर के लिए प्रकाश का स्रोत आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख ठीक है तो तेरा सारा शरीर प्रकाशवान रहेगा, किंतु यदि तेरी आंख बुरी हो जाए तो तेरा सारा शरीर अंधेरे से भर जाएगा। इसलिए वह एकमात्र प्रकाश जो तेरे भीतर है यदि अंधकारमय हो जाए तो वह अंधेरा कितना गहरा होगा। कोई भी एक साथ दो स्वामियों का सेवक नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक से घृणा करेगा और दूसरे से प्रेम, या एक के प्रति समर्पित रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम धन और परमेश्वर दोनों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते। मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीने के लिए खाने पीने की चिंता छोड़ दो, अपने शरीर के लिए वस्त्रों की चिंता छोड़ दो। निश्चय ही जीवन भोजन से और शरीर कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण है। देखो, आकाश के पक्षी न तो बुआई करते हैं और न कटाई, न ही वे कोठारों में अनाज भरते हैं, किंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका भी पेट भरता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो? तुम में से क्या कोई ऐसा है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी और बढ़ा सकता है? और तुम अपने वस्त्रों की क्यों सोचते हो? सोचो जंगल के फूलों की, वे कैसे खिलते हैं। वे न कोई काम करते हैं और न अपने लिए कपड़े बनाते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव के साथ उनमें से किसी एक के समान भी नहीं सज सका। इसलिए जब जंगली पौधों को जो आज जीवित हैं पर जिन्हें कल ही भाड़ में झोंक दिया जाना है परमेश्वर ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो अरे वो कम विश्वास रखने वालों, क्या वह तुम्हें और अधिक वस्त्र नहीं पहनाएगा? इसलिए चिंता करते हुए यह मत कहो कि हम क्या खाएंगे या हम क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। विधर्मी लोग इन सब वस्तुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, किंतु स्वर्ग धाम में रहने वाला तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और तुमसे जो धर्म भावना वह चाहता है उसकी चिंता करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की तो अपनी और चिंताएं होंगी, हर दिन की अपनी ही परेशानियां होती हैं।
मत्ती अध्याय 7।
दूसरों पर दोष लगाने की आदत मत डालो ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि तुम्हारा न्याय उसी फैसले के आधार पर होगा जो फैसला तुमने दूसरों का न्याय करते हुए दिया था, और परमेश्वर तुम्हें उसी नाप से नापेगा जिससे तुमने दूसरों को नापा है। तू अपने भाई बंधुओं की आंख का तिनका तक क्यों देखता है, जबकि तुझे अपनी आंख का लट्ठा भी दिखाई नहीं देता? जब तेरी अपनी आंख में लट्ठा समाया है, तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि तू मुझे तेरी आंख का तिनका निकालने दे? ओ कपटी, पहले तू अपनी आंख से लट्ठा निकाल, फिर तू ठीक तरह से देख पाएगा और अपने भाई की आंख का तिनका निकाल पाएगा। कुत्तों को पवित्र वस्तु मत दो और सुअरों के आगे अपने मोती मत बिखेरो, नहीं तो वे सुअर उन्हें पैरों तले रौंद डालेंगे और कुत्ते पलट कर तुम्हारी भी धज्जियां उड़ा देंगे। परमेश्वर से मांगते रहो, तुम्हें दिया जाएगा, खोजते रहो, तुम्हें प्राप्त होगा, खटखटाते रहो, तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। क्योंकि हर कोई जो मांगता ही रहता है प्राप्त करता है, जो खोजता है पा जाता है, और जो खटखटाता ही रहता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाएगा। तुम में से ऐसा पिता कौन सा है जिसका पुत्र उससे रोटी मांगे और वह उसे पत्थर दे, या जब वह उससे मछली मांगे तो वह उसे सांप दे दे? बताओ, क्या कोई देगा? ऐसा कोई नहीं करेगा। इसलिए यदि चाहे तुम बुरे ही क्यों ना हो, जानते हो कि अपने बच्चों को अच्छे उपहार कैसे दिए जाते हैं, सो निश्चय ही स्वर्ग में स्थित तुम्हारा परम पिता मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं देगा। इसलिए जैसा व्यवहार अपने लिए तुम दूसरे लोगों से चाहते हो, वैसा ही व्यवहार तुम भी उनके साथ करो। व्यवस्था के विधि और भविष्यवक्ताओं के लिखे का यही सार है। सूक्ष्म मार्ग से प्रवेश करो। यह मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चौड़ा द्वार और बड़ा मार्ग तो विनाश की ओर ले जाता है। बहुत से लोग हैं जो उस पर चल रहे हैं, किंतु कितना संकरा है वह द्वार और कितनी सीमित है वह राह जो जीवन की ओर जाती है। बहुत थोड़े से हैं वे लोग जो उसे पा रहे हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से बचो, वे तुम्हारे पास सरल भेड़ों के रूप में आते हैं, किंतु भीतर से वे खूंखार भेड़िए होते हैं। तुम उन्हें उनके कर्मों के परिणामों से पहचानोगे। कोई कंटीली झाड़ी से न तो अंगूर इकट्ठे कर पाता है और न ही गोखरू से अंजीर। ऐसे ही अच्छे पेड़ पर अच्छे फल लगते हैं, किंतु बुरे पेड़ पर तो बुरे फल ही लगते हैं। एक उत्तम वृक्ष बुरे फल नहीं उपजाता और न ही कोई बुरा पेड़ उत्तम फल पैदा कर सकता है। हर वह पेड़ जिस पर अच्छे फल नहीं लगते हैं काट कर आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए मैं तुम लोगों से फिर दोहरा कर कहता हूं कि उन लोगों को तुम उनके कर्मों के परिणामों से पहचानोगे। प्रभु प्रभु कहने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएगा, बल्कि वह जो स्वर्ग में स्थित मेरे परम पिता की इच्छा पर चलता है वही उसमें प्रवेश पाएगा। उस महान दिन बहुत से मुझसे पूछेंगे, प्रभु हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? और क्या हमने तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे कुकर्मियों, यहां से भाग जाओ। इसलिए जो कोई भी मेरे इन शब्दों को सुनता है और इन पर चलता है, उसकी तुलना उस बुद्धिमान मनुष्य से होगी जिसने अपना मकान चट्टान पर बनाया। वर्षा हुई, बाढ़ आई, आंधियां चली और यह सब उस मकान से टकराए, पर वह गिरा नहीं क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर रखी गई थी। किंतु वह जो मेरे शब्दों को सुनता है पर उन पर आचरण नहीं करता, उस मूर्ख मनुष्य के समान है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। वर्षा हुई, बाढ़ आई, आंधियां चली और उस मकान से टकराई, जिससे वह मकान पूरी तरह ढह गया।
परिणाम यह हुआ कि जब यीशु ने ये बातें कहकर पूरी की तो उसके उपदेशों पर लोगों की भीड़ को बड़ा अचरज हुआ, क्योंकि वह उन्हें यहूदी धर्म नेताओं के समान नहीं बल्कि एक अधिकारी के समान शिक्षा दे रहा था। मत्ती अध्याय 8। यीशु जब पहाड़ से नीचे उतरा तो बहुत बड़ा जनसमूह उसके पीछे हो लिया। वहीं एक कोढ़ी भी था। वह यीशु के पास आया और उसके सामने झुककर बोला,
प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है।
इस पर यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर कोढ़ी को छुआ और कहा,
निश्चय ही मैं चाहता हूँ, ठीक हो जा।
और तत्काल कोढ़ी का कोढ़ जाता रहा। फिर यीशु ने उससे कहा,
देख, इस बारे में किसी से कुछ मत कहना, पर याजक के पास जाकर उसे अपने आप को दिखा, फिर मूसा के आदेश के अनुसार भेंट चढ़ा, ताकि लोगों को तेरे ठीक होने की साक्षी मिले।
फिर यीशु जब कफरनहूम पहुंचा, एक रोमी सेनानायक उसके पास आया और उससे सहायता के लिए विनती करता हुआ बोला,
प्रभु, मेरा एक दास घर में बीमार पड़ा है, उसे लकवा मार दिया है, उसे बहुत पीड़ा हो रही है।
तब यीशु ने सेनानायक से कहा,
मैं आकर उसे अच्छा करूंगा।
सेनानायक ने उत्तर दिया,
प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर में आए, इसलिए केवल आज्ञा दे दे, बस मेरा दास ठीक हो जाएगा। यह मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो किसी बड़े अधिकारी के नीचे काम करता हूँ, और मेरे नीचे भी दूसरे सिपाही हैं। जब मैं एक सिपाही से कहता हूँ जा, तो वह चला जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ, तो वह आ जाता है। मैं अपने दास से कहता हूँ कि यह कर, तो वह उसे करता है।
जब यीशु ने यह सुना तो चकित होते हुए उसने जो लोग उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा,
मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मैंने इतना गहरा विश्वास इसराइल में भी किसी में नहीं पाया। मैं तुम्हें यह और बताता हूँ कि बहुत से पूर्व और पश्चिम से आएंगे, और वे भोज में इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे, किंतु राज्य की मूलभूत प्रजा बाहर अंधेरे में धकेल दी जाएगी, जहां वे लोग चीख पुकार करते हुए दांत पीसते रहेंगे।
तब यीशु ने उस सेनानायक से कहा,
जा, वैसा ही तेरे लिए हो जैसा तेरा विश्वास है।
और तत्काल उस सेनानायक का दास अच्छा हो गया। यीशु जब पतरस के घर पहुंचा, उसने पतरस की सास को बुखार से पीड़ित बिस्तर में लेटे देखा, सो यीशु ने उसे अपने हाथ से छुआ और उसका बुखार उतर गया। फिर वह उठी और यीशु की सेवा करने लगी। जब सांझ हुई तो लोग उसके पास बहुत से ऐसे लोगों को लेकर आए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं। अपनी एक ही आज्ञा से उसने दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। इस तरह उसने सभी रोगियों को चंगा कर दिया। यह इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यशायाह द्वारा जो कुछ कहा था पूरा हो,
उसने हमारे रोगों को ले लिया और हमारे संतापों को ओढ़ लिया।
यीशु ने जब अपने चारों ओर भीड़ देखी तो उसने अपने अनुयायियों को आज्ञा दी कि वे झील के परले किनारे चले जाएं। तब एक यहूदी धर्मशास्त्री उसके पास आया और बोला,
गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा।
इस पर यीशु ने उससे कहा,
लोमड़ियों की खोह और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, किंतु मनुष्य के पुत्र के पास सिर टिकाने को भी कोई स्थान नहीं है।
और उसके एक शिष्य ने उससे कहा,
प्रभु, पहले मुझे जाकर अपने पिता को गाड़ने की अनुमति दे।
किंतु यीशु ने उससे कहा,
मेरे पीछे चला आ और मरे हुओं को अपने मुर्दे आप गाड़ने दे।
तब यीशु एक नाव पर जा बैठा, उसके अनुयायी भी उसके साथ थे। उसी समय झील में इतना भयंकर तूफान उठा कि नाव लहरों से दबी जा रही थी, किंतु यीशु सो रहा था। तब उसके अनुयायी उसके पास पहुंचे और उसे जगा कर बोले,
प्रभु, हमारी रक्षा कर, हम मरने को हैं।
तब यीशु ने उनसे कहा,
अरे अल्प विश्वासियों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो?
तब उसने खड़े होकर तूफान और झील को डांटा और चारों तरफ शांति छा गई। लोग चकित थे, उन्होंने कहा,
यह कैसा व्यक्ति है, आंधी तूफान और सागर तक इसकी बात मानते हैं।
जब यीशु झील के उस पार गदरेनियों के देश पहुंचा तो उसे कब्रों से निकलकर आते दो व्यक्ति मिले जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं। वे इतने भयानक थे कि उस राह से कोई निकल तक नहीं सकता था। वे चिल्लाए,
हे परमेश्वर के पुत्र, तू हमसे क्या चाहता है? क्या तू यहाँ निश्चित समय से पहले ही हमें दंड देने आया है?
वहाँ कुछ ही दूरी पर बहुत से सुअरों का एक रेवड़ चर रहा था, सो उन दुष्ट आत्माओं ने उससे विनती करते हुए कहा,
यदि तुझे हमें बाहर निकालना ही है तो हमें सुअरों के उस झुंड में भेज दे।
सो यीशु ने उनसे कहा, चले जाओ। तब वे उन व्यक्तियों में से बाहर निकल आए और सुअरों में जा घुसे। फिर वह समूचा रेवड़ ढलान से लुढ़कते पुड़कते दौड़ता हुआ झील में जा गिरा। सभी सुअर पानी में डूबकर मर गए। सुअर के रेवड़ों के रखवाले तब वहां से दौड़ते हुए नगर में आए और सुअरों के साथ तथा दुष्टात्माओं से ग्रस्त उन व्यक्तियों के साथ जो कुछ हुआ था कह सुनाया। फिर तो नगर के सभी लोग यीशु से मिलने बाहर निकल पड़े। जब उन्होंने यीशु को देखा तो उससे विनती की कि वह उनके यहां से कहीं और चला जाए। मत्ती अध्याय 9। फिर यीशु एक नाव पर जा चढ़ा और झील के पार अपने नगर आ गया। लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर लिटाकर उसके पास लाए। यीशु ने जब उनके विश्वास को देखा तो उसने लकवे के रोगी से कहा,
हिम्मत रख हे बालक, तेरे पाप को क्षमा किया गया।
तभी कुछ यहूदी धर्मशास्त्री आपस में कहने लगे,
यह व्यक्ति यीशु अपने शब्दों से परमेश्वर का अपमान करता है।
यीशु क्योंकि जानता था कि वे क्या सोच रहे हैं, उनसे बोला,
तुम अपने मन में बुरे विचार क्यों आने देते हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना खड़ा हो और चल पड़, ताकि तुम यह जान सको कि पृथ्वी पर पापों को क्षमा करने की शक्ति मनुष्य के पुत्र में है।
यीशु ने लकवे के मारे से कहा,
खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और घर चला जा।
वह लकवे का रोगी खड़ा होकर अपने घर चला गया। जब भीड़ में लोगों ने यह देखा तो वे श्रद्धामय विस्मय से भर उठे और परमेश्वर की स्तुति करने लगे जिसने मनुष्य को ऐसी शक्ति दी। यीशु जब वहां से जा रहा था तो उसने चुंगी की चौकी पर बैठे एक व्यक्ति को देखा, उसका नाम मत्ती था। यीशु ने उससे कहा,
मेरे पीछे चला आ।
इस पर मत्ती खड़ा हुआ और उसके पीछे हो लिया। ऐसा हुआ कि जब यीशु मत्ती के घर बहुत से चुंगी वसूलने वालों और पापियों के साथ अपने अनुयायियों समेत भोजन कर रहा था तो उसे फरीसियों ने देखा। वे यीशु के अनुयायियों से पूछने लगे,
तुम्हारा गुरु चुंगी वसूलने वालों और दुष्टों के साथ खाना क्यों खा रहा है?
यह सुनकर यीशु उनसे बोला,
स्वस्थ लोगों को नहीं बल्कि रोगियों को एक चिकित्सक की आवश्यकता होती है, इसलिए तुम लोग जाओ और समझो कि शास्त्र के इस वचन का अर्थ क्या है, मैं बलिदान नहीं चाहता बल्कि दया चाहता हूँ, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ।
फिर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के शिष्य यीशु के पास गए और उससे पूछा,
हम और फरीसी बार बार उपवास क्यों करते हैं और तेरे अनुयायी क्यों नहीं करते?
फिर यीशु ने उन्हें बताया,
क्या दूल्हे के साथी जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक मना सकते हैं, किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे छीन लिया जाएगा, फिर उस समय वे दुखी होंगे और उपवास करेंगे। बिना सिकुड़े नए कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि यह पैबंद पोशाक को और अधिक फाड़ देगा और कपड़े की खींच और बढ़ जाएगी। नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता, नहीं तो मशकें फट जाती हैं और दाखरस बहकर बिखर जाता है और मशकें भी नष्ट हो जाती हैं। इसलिए लोग नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं, जिससे दाखरस और मशक दोनों ही सुरक्षित रहते हैं।
यीशु उन लोगों को जब ये बातें बता ही रहा था, तभी यहूदी आराधनालय का एक मुखिया उसके पास आया और उसके सामने झुककर विनती करते हुए बोला,
अभी अभी मेरी बेटी मर गई है, तू चलकर यदि उस पर अपना हाथ रख दे तो वह फिर से जी उठेगी।
इस पर यीशु खड़ा होकर अपने शिष्यों समेत उसके साथ चल दिया। वहीं एक ऐसी स्त्री थी जिसे 12 साल से बहुत अधिक रक्त बह रहा था। वह पीछे से यीशु के निकट आई और उसके वस्त्र की कन्नी छू ली। वह मन में सोच रही थी,
यदि मैं तनिक भी इसका वस्त्र छू पाऊं तो ठीक हो जाऊंगी।
मुड़कर उसे देखते हुए यीशु ने कहा,
बेटी हिम्मत रख, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है।
और वह स्त्री तुरंत उसी क्षण ठीक हो गई। उधर यीशु जब यहूदी धर्म सभा के मुखिया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि शोक धुन बजाते हुए बांसुरी वादक और वहां इकट्ठे हुए लोग लड़की की मृत्यु पर शोक कर रहे हैं। तब यीशु ने लोगों से कहा,
यहां से बाहर जाओ, लड़की मरी नहीं है, वह तो सो रही है।
इस पर लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। फिर जब भीड़ के लोगों को बाहर भेज दिया गया तो यीशु ने लड़की के कमरे में जाकर उसका हाथ पकड़ा और वह उठ बैठी। इसका समाचार उस सारे क्षेत्र में फैल गया। यीशु जब वहां से जाने लगा तो दो अंधे व्यक्ति उसके पीछे हो लिए। वे पुकार रहे थे,
हे दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर।
यीशु जब घर के भीतर पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए। तब यीशु ने उनसे कहा,
क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें फिर से आंखें दे सकता हूँ?
उन्होंने उत्तर दिया,
हाँ प्रभु।
इस पर यीशु ने उनकी आंखों को छूते हुए कहा,
तुम्हारे लिए वैसा ही हो जैसा तुम्हारा विश्वास है।
और अंधों को दृष्टि मिल गई। फिर यीशु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा,
इसके विषय में किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
किंतु उन्होंने वहां से जाकर इस समाचार को उस क्षेत्र में चारों ओर फैला दिया। जब वे दोनों वहां से जा रहे थे तो कुछ लोग यीशु के पास एक गूंगे को लेकर आए। गूंगे में दुष्ट आत्मा समाई हुई थी और इसलिए वह कुछ बोल नहीं पाता था। जब दुष्ट आत्मा को निकाल दिया गया तो वह गूंगा, जो पहले कुछ भी नहीं बोल सकता था, बोलने लगा। तब भीड़ के लोगों ने अचरज से भरकर कहा,
इसराइल में ऐसी बात पहले कभी नहीं देखी गई।
किंतु फरीसी कह रहे थे,
वह दुष्ट आत्माओं को शैतान की सहायता से बाहर निकालता है।
यीशु यहूदी आराधनालयों में उपदेश देता, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता, लोगों के रोगों और हर प्रकार के संतापों को दूर करता, उस सारे क्षेत्र में गांव-गांव और नगर-नगर घूमता रहा था। यीशु जब किसी भीड़ को देखता तो उसके प्रति करुणा से भर जाता था, क्योंकि वे लोग वैसे ही सताए हुए और असहाय थे जैसे वे भेड़ें होती हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं होता। तब यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा,
तैयार खेत तो बहुत हैं, किंतु मजदूर कम हैं। इसलिए फसल के प्रभु से प्रार्थना करो कि वह अपनी फसल को काटने के लिए मजदूर भेजें।
मत्ती अध्याय 10। सो यीशु ने अपने 12 शिष्यों को पास बुलाकर उन्हें दुष्टात्माओं को बाहर निकालने और हर तरह के रोगों और संतापों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। उन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं, सबसे पहला शमौन जो पतरस कहलाया, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस, बर्तोलमै, थोमा, कर वसूलने वाला मत्ती, हल्फे का बेटा याकूब और तद्दै, शमौन, जिलोत और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे धोखे से पकड़वाया था। यीशु ने इन बारहों को बाहर भेजते हुए आज्ञा दी,
गैर यहूदियों के क्षेत्र में मत जाओ तथा किसी भी सामरी नगर में प्रवेश मत करो, बल्कि इसराइल के परिवार की खोई हुई भेड़ों के पास ही जाओ और उन्हें उपदेश दो, स्वर्ग का राज निकट है। बीमारों को ठीक करो, मरे हुओं को जीवन दो, कोढ़ियों को चंगा करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने बिना कुछ दिए प्रभु की आशीष और शक्तियां पाई हैं, इसलिए उन्हें दूसरों को बिना कुछ लिए मुक्त भाव से बांटो। अपने पटुके में सोना, चांदी या तांबा मत रखो। यात्रा के लिए कोई झोला तक मत लो। कोई फालतू कुर्ता, चप्पल और छड़ी मत रखो, क्योंकि मजदूर का उसके खाने पर अधिकार है। तुम लोग जब कभी किसी नगर या गांव में जाओ तो पता करो कि वहां विश्वास योग्य कौन है, फिर तब तक वहीं ठहरे रहो जब तक वहां से चल न दो। जब तुम किसी घर बार में जाओ तो परिवार के लोगों का सत्कार करते हुए कहो, तुम्हें शांति मिले। यदि घर बार के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा आशीर्वाद उनके साथ साथ रहेगा, और यदि वे इस योग्य न होंगे तो तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। यदि कोई तुम्हारा स्वागत न करे या तुम्हारी बात न सुने तो उस घर या उस नगर को छोड़ दो और अपने पांव में लगी वहां की धूल वहीं झाड़ दो। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि जब न्याय होगा उस दिन उस नगर की स्थिति से सदोम और अमोरा नगरों की स्थिति कहीं अच्छी होगी। सावधान, मैं तुम्हें ऐसे ही बाहर भेज रहा हूं जैसे भेड़ों को भेड़ियों के बीच में भेजा जाए। सो सांपों की तरह चतुर और कबूतरों के समान भोले बनो। लोगों से सावधान रहना, क्योंकि वे तुम्हें बंदी बनाकर यहूदी पंचायतों को सौंप देंगे और वे तुम्हें अपने आराधनालयों में कोड़ों से पिटवाएंगे। तुम्हें शासकों और राजाओं के सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि तुम मेरे अनुयायी हो। तुम्हें अवसर दिया जाएगा कि तुम उनकी और गैर यहूदियों को मेरे बारे में गवाही दो। जब वे तुम्हें पकड़ें तो चिंता मत करना कि तुम्हें क्या कहना है और कैसे कहना है, क्योंकि उस समय तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुम्हें क्या बोलना है। याद रखो, बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि तुम्हारे परम पिता की आत्मा तुम्हारे भीतर बोलेगी। भाई अपने भाइयों को पकड़वा कर मरवा डालेंगे, माता पिता अपने बच्चों को पकड़वाएंगे और बच्चे अपने माँ बाप के विरुद्ध हो जाएंगे, वे उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण लोग तुमसे घृणा करेंगे, किंतु जो अंत तक टिका रहेगा उसी का उद्धार होगा। वे जब तुम्हें एक नगर में सताएं तो तुम दूसरे में भाग जाना। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि इससे पहले कि तुम इसराइल के सभी नगरों का चक्कर पूरा करो, मनुष्य का पुत्र दोबारा आ जाएगा। शिष्य अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न ही कोई दास अपने स्वामी से बड़ा होता है। शिष्य को गुरु के बराबर होने में और दास को स्वामी के बराबर होने में ही संतोष करना चाहिए। जब वे घर के स्वामी को ही बेलजाबुल कहते हैं तो उसके घर के दूसरे लोगों के साथ तो और भी बुरा व्यवहार करेंगे। इसलिए उनसे डरना मत, क्योंकि जो कुछ छिपा है सब उजागर होगा और हर वह वस्तु जो गुप्त है प्रकट की जाएगी। मैं अंधेरे में जो कुछ तुमसे कहता हूं, मैं चाहता हूं उसे तुम उजाले में कहो। मैंने जो कुछ तुम्हारे कानों में कहा है तुम उसकी मकान की छतों पर चढ़कर घोषणा करो। उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं किंतु तुम्हारी आत्मा को नहीं मार सकते। बस उस परमेश्वर से डरो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा को नरक में डालकर नष्ट कर सकता है। एक पैसे की दो चिड़ियाओं में से भी एक तुम्हारे परम पिता के जाने बिना और उसकी इच्छा के बिना धरती पर नहीं गिर सकती। अरे तुम्हारे तो सिर का एक एक बाल तक गिना हुआ है, इसलिए डरो मत, तुम्हारा मूल्य तो वैसी अनेक चिड़ियाओं से कहीं अधिक है। जो कोई मुझे सब लोगों के सामने अपनाएगा, मैं भी उसे स्वर्ग में स्थित अपने परम पिता के सामने अपनाऊंगा। किंतु जो कोई मुझे सब लोगों के सामने नकारेगा, मैं भी उसे स्वर्ग में स्थित परम पिता के सामने नकारूंगा। यह मत सोचो कि मैं धरती पर शांति लाने आया हूं, शांति नहीं बल्कि मैं तलवार का आवाहन करने आया हूं। मैं यह करने आया हूं, पुत्र पिता के विरोध में, पुत्री मां के विरोध में, बहू सास के विरोध में होंगे, मनुष्य के शत्रु उसके अपने घर के ही लोग होंगे। जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्रेम करता है वह मेरा होने के योग्य नहीं है। जो अपने बेटे बेटी को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वह मेरा होने के योग्य नहीं है। वह जो यातनाओं का अपना क्रूस स्वयं उठाकर मेरे पीछे नहीं हो लेता मेरा होने के योग्य नहीं है। वह जो अपनी जान बचाने की चेष्टा करता है अपने प्राण खो देगा, किंतु जो मेरे लिए अपनी जान देगा वह जीवन पाएगा। जो तुम्हें अपनाता है वह मुझे अपनाता है, और जो मुझे अपनाता है वह उस परमेश्वर को अपनाता है जिसने मुझे भेजा है। जो किसी नबी को इसलिए अपनाता है कि वह नबी है, उसे वही प्रतिफल मिलेगा जो कि नबी को मिलता है। और यदि तुम किसी भले आदमी का इसलिए स्वागत करते हो कि वह भला आदमी है, उसे सचमुच वही प्रतिफल मिलेगा जो किसी भले आदमी को मिलना चाहिए। और यदि कोई मेरे इन भोले भाले शिष्यों में से किसी एक को भी इसलिए एक गिलास ठंडा पानी तक दे कि वह मेरा अनुयायी है, तो मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि उसे इसका प्रतिफल निश्चय ही बिना मिले नहीं रहेगा।
मत्ती अध्याय 11। अपने 12 शिष्यों को इस प्रकार समझा चुकने के बाद यीशु वहां से चल पड़ा और गलील प्रदेश के नगरों में उपदेश देता घूमने लगा। यूहन्ना ने जब जेल में यीशु के कामों के बारे में सुना तो उसने अपने शिष्यों के द्वारा संदेश भेजकर पूछा कि
क्या तू वही है जो आने वाला था, या हम किसी और आने वाले की बाट जो है?
उत्तर देते हुए यीशु ने कहा,
जो कुछ तुम सुन रहे हो और देख रहे हो जाकर यूहन्ना को बताओ कि अंधों को आंखें मिल रही हैं, लूले लंगड़े चल पा रहे हैं, कोढ़ी चंगे हो रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं और मरे हुए जिलाए जा रहे हैं, और दीन दुखियों में सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है। वह धन्य है जो मुझे अपना सकता है।
जब यूहन्ना के शिष्य वहां से जा रहे थे तो यीशु भीड़ में लोगों से यूहन्ना के बारे में कहने लगा,
तुम लोग इस बियाबान में क्या देखने आए हो? क्या कोई सरकंडा जो हवा में थरथरा रहा है? नहीं तो फिर तुम क्या देखने आए हो? क्या एक पुरुष जिसने बहुत अच्छे वस्त्र पहने हैं? देखो, जो उत्तम वस्त्र पहनते हैं वो तो राजभवनों में ही पाए जाते हैं। तो तुम क्या देखने आए हो? क्या कोई नबी? हां, मैं तुम्हें बताता हूं कि जिसे तुमने देखा है वह किसी नबी से कहीं ज्यादा है। यह वही है जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा है, देख मैं तुझसे पहले ही अपना दूत भेज रहा हूं, वह तेरे लिए राह बनाएगा। मैं तुझसे सत्य कहता हूं, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से बड़ा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ, फिर भी स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा व्यक्ति भी यूहन्ना से बड़ा है। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के समय से आज तक स्वर्ग का राज्य भयानक आघातों को झेलता रहा है और हिंसा के बल पर इसे छीनने का प्रयत्न किया जाता रहा है। यूहन्ना के आने तक सभी भविष्यवक्ताओं और मूसा की व्यवस्था ने भविष्यवाणी की थी, और यदि तुम व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं ने जो कुछ कहा उसे स्वीकार करने को तैयार हो, तो जिसके आने की भविष्यवाणी की गई थी यह यूहन्ना वही एलियाह है। जो सुन सकता है सुने। आज की पीढ़ी के लोगों की तुलना मैं किनसे करूं? वे बाजारों में बैठे उन बच्चों के समान हैं, जो एक दूसरे से पुकार कर कह रहे हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई पर तुम नहीं नाचे, हमने शोक गीत गाए किंतु तुम नहीं रोए, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आया जो न औरों की तरह खाता था और न ही पीता था, पर लोगों ने कहा था कि उसमें दुष्टात्मा है। फिर मनुष्य का पुत्र आया जो औरों के समान ही खाता पीता है, पर लोग कहते हैं इस आदमी को देखो, यह पेटू है, पियक्कड़ है, यह चुंगी वसूलने वालों और पापियों का मित्र है, किंतु बुद्धि की उत्तमता उसके कामों से सिद्ध होती है।
फिर यीशु ने उन नगरों को धिक्कारा जिनमें उसने बहुत से आश्चर्य कर्म किए थे, क्योंकि वहां के लोगों ने पाप करना नहीं छोड़ा और अपना मन नहीं फिराया था।
अरे अभागे खुराजीन, अरे अभागे बैतसैदा, तुम में जो आश्चर्य कर्म किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो वहां के लोग बहुत पहले से ही टाट के शोक वस्त्र ओढ़कर और अपने शरीर पर राख मलकर खेद व्यक्त करते हुए मन फिरा चुके होते। किंतु मैं तुम लोगों से कहता हूं, न्याय के दिन सूर और सैदा की स्थिति तुमसे अधिक सहने योग्य होगी। और अरे कफरनहूम, क्या तू सोचता है कि तुझे स्वर्ग की महिमा तक ऊंचा उठाया जाएगा? तू तो अधोलोक में नरक को जाएगा, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म तुझ में किए गए, यदि वे सदोम में किए जाते तो वह नगर आज तक टिका रहता। पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि न्याय के दिन तेरे लोगों की हालत से सदोम की हालत कहीं अच्छी होगी।
उस अवसर पर यीशु बोला,
परम पिता, तू स्वर्ग और धरती का स्वामी है, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन बातों को उनसे जो ज्ञानी हैं और समझदार हैं छिपा कर रखा है और जो भोले भाले हैं उनके लिए प्रकट किया है। हाँ परमपिता, यह इसलिए हुआ क्योंकि तूने इसे ही ठीक जाना। मेरे परमपिता ने सब कुछ मुझे सौंप दिया और वास्तव में परमपिता के अलावा कोई भी पुत्र को नहीं जानता और कोई भी पुत्र के अलावा परमपिता को नहीं जानता, और हर वह व्यक्ति परमपिता को जानता है जिसके लिए पुत्र ने उसे प्रकट करना चाहा है। हे थके मांदे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुख चैन दूंगा। मेरा जुआ लो और उसे अपने ऊपर संभालो, फिर मुझसे सीखो, क्योंकि मैं सरल हूं और मेरा मन कोमल है। तुम्हें भी अपने लिए सुख चैन मिलेगा, क्योंकि वह जुआ जो मैं तुम्हें दे रहा हूं बहुत सरल है और वह बोझ जो मैं तुम पर डाल रहा हूं हल्का है।
मत्ती अध्याय 12। लगभग उसी समय यीशु सप्त के दिन अनाज के खेतों से होकर जा रहा था। उसके शिष्यों को भूख लगी और वे गेहूं की कुछ बालें तोड़कर खाने लगे। फरीसियों ने ऐसा होते देखकर कहा,
देख तेरे शिष्य वह कर रहे हैं जिसका सप्त के दिन किया जाना मूसा की व्यवस्था के अनुसार उचित नहीं है।
इस पर यीशु ने उनसे पूछा,
क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद और उसके साथियों ने जब उन्हें भूख लगी क्या किया था? उसने परमेश्वर के घर में घुसकर परमेश्वर को चढ़ाई पवित्र रोटियां कैसे खाई थी? यद्यपि उसको और उसके साथियों को उनका खाना मूसा की व्यवस्था के विरुद्ध था, उनको केवल याजक ही खा सकते थे। या मूसा की व्यवस्था में तुमने यह नहीं पढ़ा कि शब्द के दिन मंदिर के याजक ही वास्तव में शब्द को बिगाड़ते हैं और फिर भी उन्हें कोई कुछ नहीं कहता? किंतु मैं तुमसे कहता हूं, यहां कोई है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम शास्त्रों में जो लिखा है उसे जानते कि मैं लोगों में दया चाहता हूं पशु बलि नहीं, तो तुम उन्हें दोषी नहीं ठहराते जो निर्दोष हैं। हाँ, मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी स्वामी है।
फिर वह वहां से चल दिया और यहूदी आराधनालय में पहुंचा। वहां एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूख चुका था, सो लोगों ने यीशु से पूछा,
मूसा के विधि के अनुसार शब्द के दिन किसी को चंगा करना क्या उचित है?
उन्होंने उससे यह इसलिए पूछा था कि वे उस पर दोष लगा सकें, किंतु उसने उन्हें उत्तर दिया,
मानो तुम में से किसी के पास एक ही भेड़ है और वह भेड़ सब्त के दिन किसी गड्ढे में गिर जाती है, तो क्या तुम उसे पकड़कर बाहर नहीं निकालोगे? फिर आदमी तो एक भेड़ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सो सब्त के दिन मूसा की व्यवस्था भलाई करने की अनुमति देती है।
तब यीशु ने उस सूखे हाथ वाले आदमी से कहा,
अपना हाथ आगे बढ़ा,
और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वह पूरी तरह अच्छा हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे उसका दूसरा हाथ था। फिर फरीसी वहां से चले गए और उसे मारने के लिए कोई रास्ता ढूंढने की तरकीब सोचने लगे। यीशु यह जान गया और वहां से चल पड़ा। बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। उसने उन्हें चंगा करते हुए चेतावनी दी कि वे उसके बारे में लोगों को कुछ न बताएं। यह इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ता यशायाह द्वारा प्रभु ने जो कहा था वो पूरा हो,
यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, यह मेरा प्यारा है, मैं इससे आनंदित हूँ, अपनी आत्मा इस पर मैं रखूंगा, सब देशों के सब लोगों को यही न्याय घोषणा करेगा, यह कभी नहीं चीखेगा या झगड़ेगा, लोग इसे गलियों कूचों में नहीं सुनेंगे, यह झुके सरकंडे तक को नहीं तोड़ेगा, यह बुझते दीपक तक को नहीं बुझाएगा, डटा रहेगा तब तक जब तक कि न्याय विजय न हो, तब फिर सभी लोग अपनी आशाएं उसमें बांधेंगे, बस केवल उसी नाम में।
फिर यीशु के पास लोग एक ऐसे अंधे को लाए जो गूंगा भी था, क्योंकि उस पर दुष्ट आत्मा सवार थी। यीशु ने उसे चंगा कर दिया और इसलिए वो गूंगा अंधा बोलने और देखने लगा। इस पर सभी लोगों को बहुत अचरज हुआ और वे कहने लगे,
क्या यह व्यक्ति दाऊद का पुत्र हो सकता है?
जब फरीसियों ने यह सुना तो वे बोले,
यह दुष्ट आत्माओं को उनके शासक बेलजबूल के सहारे निकालता है।
यीशु को उनके विचारों का पता चल गया। वह उनसे बोला,
हर वह राज्य जिसमें फूट पड़ जाती है नष्ट हो जाता है, वैसे ही हर नगर या परिवार जिसमें फूट पड़ जाए टिका नहीं रहेगा। तो यदि शैतान ही अपने आप को बाहर निकाले, फिर तो उसमें अपने ही विरुद्ध फूट पड़ गई है, सो उसका राज्य कैसे बना रहेगा? और फिर यदि यह सच है कि मैं बेलजाबुल के सहारे दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो तुम्हारे अनुयायी किसके सहारे उन्हें बाहर निकालते हैं? सो तुम्हारे अपने अनुयायी ही सिद्ध करेंगे कि तुम अनुचित हो। मैं दुष्टात्माओं को परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से निकालता हूं। इससे यह सिद्ध है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट ही आ पहुंचा है। फिर कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल कैसे चुरा सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवान को बांध न दे, तभी वह उसके घर को लूट सकता है। जो मेरा साथ नहीं है मेरा विरोधी है, और जो बिखरी हुई भेड़ों को इकट्ठा करने में मेरी मदद नहीं करता है वह उन्हें बिखरा रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि सभी की हर निंदा और पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, किंतु आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं किया जाएगा। कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में यदि कुछ कहता है तो उसे क्षमा किया जा सकता है, किंतु पवित्र आत्मा के विरोध में कोई कुछ कहे तो उसे क्षमा नहीं किया जाएगा, न इस युग में और न आने वाले युग में। तुम लोग जानते हो कि अच्छा फल लेने के लिए तुम्हें अच्छा पेड़ ही लगाना चाहिए, और बुरे पेड़ से बुरा ही फल मिलता है, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही जाना जाता है। अरे ओ सांप के बच्चों, जब तुम बुरे हो तो अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? व्यक्ति के शब्द जो उसके मन में भरा है उसी से निकलते हैं। एक अच्छा व्यक्ति जो अच्छाई उसके मन में इकट्ठी है उसी में से अच्छी बातें निकालता है, जबकि एक बुरा व्यक्ति जो बुराई उसके मन में है उसी में से बुरी बातें निकालता है। किंतु मैं तुम लोगों को बताता हूं कि न्याय के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने हर व्यर्थ बोले शब्द का हिसाब देना होगा। तेरी बातों के आधार पर ही तुझे निर्दोष और तेरी बातों के आधार पर ही तुझे दोषी ठहराया जाएगा।
फिर कुछ यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा,
गुरु हम तुझे आश्चर्य चिन्ह प्रकट करते देखना चाहते हैं।
उत्तर देते हुए यीशु ने कहा,
इस युग के बुरे और दुराचारी लोग ही आश्चर्य चिन्ह देखना चाहते हैं। भविष्यवक्ता योना के आश्चर्य चिन्ह को छोड़कर उन्हें और कोई आश्चर्य चिन्ह नहीं दिया जाएगा।
और जैसे योना 3 दिन और 3 रात उस समुद्री जीव के पेट में रहा था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात धरती के भीतर रहेगा। न्याय के दिन निनेवा के निवासी आज की इस पीढ़ी के लोगों के साथ खड़े होंगे और उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि निनेवा के वासियों ने योना के उपदेश से मन फिराया था, और यहां तो कोई योना से भी बड़ा मौजूद है।
न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ खड़ी होगी और उन्हें अपराधी ठहराएगी, क्योंकि वह धरती के दूसरे छोर से सुलेमान का उपदेश सुनने आई थी, और यहां तो कोई सुलेमान से भी बड़ा मौजूद है। जब कोई दुष्टात्मा किसी व्यक्ति को छोड़ती है तो वह आराम की खोज में सूखी धरती ढूंढती फिरती है, किंतु वह उसे मिल नहीं पाती। तब वह कहती है कि जिस घर को मैंने छोड़ा था, मैं फिर वहीं लौट जाऊंगी। सो वह लौटती है और उसे अब तक खाली, साफ सुथरा तथा सजा संवरा पाती है। फिर वह लौटती है और अपने साथ 7 और दुष्टात्माओं को लाती है, जो उससे भी बुरी होती हैं। फिर वे सब आकर वहां रहने लगती हैं, और उस व्यक्ति की दशा पहले से भी अधिक भयानक हो जाती है। आज की इस बुरी पीढ़ी के लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी।
वह अभी भीड़ के लोगों से बातें कर ही रहा था कि उसकी माता और भाई बंधु वहां आकर बाहर खड़े हो गए। वे उससे बातें करने को बाट जो रहे थे। किसी ने यीशु से कहा,
सुन, तेरी माँ और तेरे भाई बंधु बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं।
उत्तर में यीशु ने बात करने वाले से कहा,
कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई बंधु?
फिर उसने हाथ से अपने अनुयायियों की तरफ इशारा करते हुए कहा,
ये है मेरी माँ और मेरे भाई बंधु। हाँ, स्वर्ग में स्थित मेरे पिता की इच्छा पर जो कोई चलता है, वही मेरा भाई, बहन और माँ है।
मत्ती अध्याय 13। उसी दिन यीशु उस घर को छोड़कर झील के किनारे उपदेश देने जा बैठा। बहुत से लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए, सो वह एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और भीड़ किनारे पर खड़ी रही। उसने उन्हें दृष्टांतों का सहारा लेते हुए बहुत सी बातें बताई। उसने कहा,
एक किसान बीज बोने निकला। जब वह बुआई कर रहा था तो कुछ बीज राह के किनारे जा पड़े, चिड़ियाएं आईं और उन्हें चुग गईं। थोड़े बीज चट्टानी धरती पर जा गिरे, वहां मिट्टी बहुत उथली थी। बीज तुरंत उगे क्योंकि वहां मिट्टी तो गहरी थी नहीं, इसलिए जब सूरज चढ़ा तो वे पौधे झुलस गए, और क्योंकि उन्होंने ज्यादा जड़ें तो पकड़ी नहीं थी, इसलिए वे सूख कर गिर गए। बीजों का एक हिस्सा कंटीली झाड़ियों में जा गिरा, झाड़ियां बड़ी हुई और उन्होंने उन पौधों को दबोच लिया, पर थोड़े बीज जो अच्छी धरती पर गिरे थे अच्छी फसल देने लगे। फसल जितना बोया गया था उससे कोई 30 गुना 60 गुना या 100 गुना से भी ज्यादा हुई। जो सुन सकता है वह सुन ले।
फिर यीशु के शिष्यों ने उसके पास जाकर उससे पूछा,
तू उनसे बातें करते हुए दृष्टांत कथाओं का प्रयोग क्यों करता है?
उत्तर में उसने उनसे कहा,
स्वर्ग के राज्य के भेदों को जानने का अधिकार सिर्फ तुम्हें दिया गया है, उन्हें नहीं। क्योंकि जिसके पास थोड़ा बहुत है उसे और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुत अधिक हो जाएगा, किंतु जिसके पास कुछ भी नहीं है उससे जितना सा उसके पास है वह भी छीन लिया जाएगा। इसलिए मैं उनसे दृष्टांत कथाओं का प्रयोग करते हुए बात करता हूँ, क्योंकि यद्यपि वे देखते हैं पर वास्तव में उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, वे यद्यपि सुनते हैं पर वास्तव में न वे सुनते हैं न समझते हैं। इस प्रकार उन पर यशायाह की यह भविष्यवाणी खरी उतरती है, तुम सुनोगे और सुनते ही रहोगे पर तुम्हारी समझ में कुछ भी ना आएगा, तुम बस देखते ही रहोगे पर तुम्हें कुछ भी न सूझ पाएगा, क्योंकि इनके हृदय जड़ता से भर गए, इन्होंने अपने कान बंद कर रखे हैं और अपनी आंखें मूंद रखी हैं, ताकि वे अपनी आंखों से कुछ भी न देखें और वे कान से कुछ न सुन पाएं, या कि अपने हृदय से कभी न समझें और कभी मेरी ओर मुड़कर आएं, और जिससे मैं उनका उद्धार करूं। किंतु तुम्हारी आंखें और तुम्हारे कान भाग्यवान हैं, क्योंकि वे देख और सुन सकते हैं। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, बहुत से भविष्यवक्ता और धर्मात्मा जिन बातों को देखना चाहते थे उन्हें तुम देख रहे हो, वे उन्हें नहीं देख सके, और जिन बातों को वे सुनना चाहते थे उन्हें तुम सुन रहे हो, वे उन्हें नहीं सुन सके। तो बीज बोने वाले की दृष्टांत कथा का अर्थ सुनो। वह बीज जो राह के किनारे गिर पड़ा था, उसका अर्थ है कि जब कोई स्वर्ग के राज्य का सुसंदेश सुनता है और उसे समझता नहीं है, तो दुष्ट आकर उसके मन में जो उगा था उसे उखाड़ ले जाता है। वे बीज जो चट्टानी धरती पर गिरे थे, उनका अर्थ है वह व्यक्ति जो सुसंदेश सुनता है, उसे आनंद के साथ तत्काल ग्रहण भी करता है, किंतु अपने भीतर उसकी जड़ें नहीं जमने देता, वह थोड़ी ही देर ठहर पाता है। जब सुसंदेश के कारण उस पर कष्ट और यातनाएं आती हैं, तो वह जल्दी ही डगमगा जाता है। कांटों में गिरे बीज का अर्थ है वह व्यक्ति जो सुसंदेश को सुनता तो है, पर संसार की चिंताएं और धन का लोभ सुसंदेश को दबा देता है और वह व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। अच्छी धरती पर गिरे बीज से अर्थ है वह व्यक्ति जो सुसंदेश को सुनता है और समझता है, वह सफल होता है। वह सफलता बोए बीज से 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना तक होती है।
यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत कथा रखी।
स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज बोए थे, पर जब लोग सो रहे थे उस व्यक्ति का शत्रु आया और गेहूं के बीच जंगली बीज बोया गया। जब गेहूं में अंकुर निकले और उस पर बालें आईं, तो खरपतवार भी दिखने लगी। तब खेत के मालिक के पास आकर उसके दासों ने उससे कहा, मालिक, तूने तो खेत में अच्छा बीज बोया था ना, फिर ये खरपतवार कहां से आई? तब उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। उसके दासों ने उससे पूछा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर खरपतवार उखाड़ दें? वह बोला, नहीं, क्योंकि जब तुम खरपतवार उखाड़ोगे तो उनके साथ तुम गेहूं भी उखाड़ दोगे। जब तक फसल पके दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, फिर कटाई के समय में फसल काटने वालों से कहूंगा कि पहले खरपतवार की पुलियां बनाकर उन्हें जला दो और फिर गेहूं को बटोर कर मेरे खते में रख दो।
यीशु ने उनके सामने और दृष्टांत कथाएं रखी।
स्वर्ग का राज्य राई के छोटे से बीज के समान होता है जिसे किसी ने लेकर खेत में बो दिया हो। यह बीज छोटे से छोटा होता है, किंतु बड़ा होने पर यह बाग के सभी पौधों से बड़ा हो जाता है। यह पेड़ बनता है और आकाश के पक्षी आकर इसकी शाखाओं पर शरण लेते हैं।
उसने उन्हें एक दृष्टांत कथा और कही।
स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसे किसी स्त्री ने 3 बार आटे में मिलाया और तब तक उसे रख छोड़ा जब तक वह सब का सब खमीर नहीं हो गया।
यीशु ने लोगों से यह सब कुछ दृष्टांत कथाओं के द्वारा कहा। वास्तव में वह उनसे दृष्टांत कथाओं के बिना कुछ भी नहीं कहता था। ऐसा इसलिए था कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा जो कुछ कहा था वह पूरा हो। परमेश्वर ने कहा,
मैं दृष्टांत कथाओं के द्वारा अपना मुंह खोलूंगा, सृष्टि के आदि काल से जो बातें छिपी रही है उन्हें उजागर करूंगा।
फिर यीशु उस भीड़ को विदा करके घर चला आया। तब उसके शिष्यों ने आकर उससे कहा,
खेत के खरपतवार के दृष्टांत का अर्थ हमें समझा।
उत्तर में यीशु बोला,
जिसने उत्तम बीज बोया था वह है मनुष्य का पुत्र, और खेत यह संसार है। अच्छे बीज का अर्थ है स्वर्ग के राज्य के लोग। खरपतवार का अर्थ है वे व्यक्ति जो शैतान की संतान है। वह शत्रु जिसने खरपतवार बीजे थे शैतान है और कटाई का समय है इस जगत का अंत और कटाई करने वाले हैं स्वर्गदूत। ठीक वैसे ही जैसे खरपतवार को इकट्ठा करके आग में जला दिया गया वैसे ही सृष्टि के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने दूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य से सभी पापियों को और उनको जो लोगों को पाप के लिए प्रेरित करते हैं इकट्ठा करके धधकते भाड़ में झोंक देंगे जहां बस दांत पीसना और रोना ही रोना होगा। तब धर्मी अपने परम पिता के राज्य में सूरज की तरह चमकेंगे। जो सुन सकता है सुन ले। स्वर्ग का राज्य खेत में गड़े धन जैसा है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और फिर उसे वहीं गाड़ दिया। वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसने जो कुछ उसके पास था जाकर बेच दिया और वह खेत मोल ले लिया। स्वर्ग का राज्य ऐसे व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में हो। जब उसे एक अनमोल मोती मिला तो जाकर जो कुछ उसके पास था उसने बेच डाला और मोती मोल ले लिया। स्वर्ग का राज्य मछली पकड़ने के लिए झील में फेंके गए एक जाल के समान भी है जिसमें तरह तरह की मछलियां पकड़ी गईं। जब वह जाल पूरा भर गया तो उसे किनारे पर खींच लिया गया और वहां बैठकर अच्छी मछलियां छांटकर टोकरियों में भर ली गईं, किंतु बेकार मछलियां फेंक दी गईं। सृष्टि के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आएंगे और धर्मियों में से पापियों को छांटकर धधकते भाड़ में झोंक देंगे जहां बस रोना और दांत पीसना होगा।
यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा,
तुम ये सब बातें समझते हो?
उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा,
देखो इसीलिए हर धर्मशास्त्री जो परमेश्वर के राज्य को जानता है एक ऐसे गृह स्वामी के समान है जो अपने कुठार से नई पुरानी वस्तुओं को बाहर निकालता है।
इन दृष्टांत कथाओं को समाप्त करके वह वहां से चल दिया और अपने देश आ गया। फिर उसने यहूदी आराधनालयों में उपदेश देना आरंभ कर दिया। इससे हर कोई अचरज में पढ़कर कहने लगा,
इसे ऐसी सूझबूझ और चमत्कारी शक्ति कहां से मिली?
क्या यह वही बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या इसकी माँ का नाम मरियम नहीं है? याकूब, यूसुफ, समोन और यहूदा इसी के तो भाई है ना?
क्या इसकी सभी बहनें हमारे ही बीच में नहीं है? तो फिर उसे ये सब कहां से मिला?
सो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। फिर यीशु ने कहा,
किसी नबी का अपने गांव और घर को छोड़कर सब आदर करते हैं।
सो उनके अविश्वास के कारण उसने वहां अधिक आश्चर्य कर्म नहीं किए। मत्ती अध्याय 14। उस समय गलील के शासक हेरोदेस ने जब यीशु के बारे में सुना तो उसने अपने सेवकों से कहा,
यह बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है जो मरे हुओं में से जी उठा है और इसलिए ये शक्तियां उसमें काम कर रही हैं जिनसे यह इन चमत्कारों को करता है।
यह वही हेरोदेस था जिसने यूहन्ना को बंदी बना जंजीरों में बांध जेल में डाल दिया था। यह उसने हेरोदियास के कहने पर किया था जो पहले उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी थी। यूहन्ना प्रायः उससे कहा करता था कि
तुझे इसके साथ नहीं रहना चाहिए।
सो हेरोदेस उसे मार डालना चाहता था पर वह लोगों से डरता था क्योंकि लोग यूहन्ना को नबी मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने हेरोदेस और उसके मेहमानों के सामने नाच कर हेरोदेस को इतना प्रसन्न किया कि उसने शपथ लेकर वह जो कुछ चाहे उसे देने का वचन दिया। अपनी माँ के सिखावे में आकर उसने कहा,
मुझे थाली में रखकर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का सिर दे।
यद्यपि राजा बहुत दुखी था किंतु अपनी शपथ और अपने मेहमानों के कारण उसने उसकी मांग पूरी करने का आदेश दे दिया। उसने जेल में यूहन्ना का सिर काटने के लिए आदमी भेजे। सो यूहन्ना का सिर थाली में रख कर लाया गया और उसे लड़की को दे दिया गया। वह उसे अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के अनुयायी आए और उन्होंने उसके धड़ को लेकर दफना दिया। और फिर उन्होंने आकर यीशु को बताया। जब यीशु ने इसकी चर्चा सुनी तो वह वहां से नाव में किसी एकांत स्थान पर अकेला चला गया। किंतु जब भीड़ को इसका पता चला तो वे अपने नगरों से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। यीशु जब नाव से बाहर निकलकर किनारे पर आया तो उसने एक बड़ी भीड़ देखी। उसे उन पर दया आई और उसने उनके बीमारों को अच्छा किया। जब शाम हुई तो उसके शिष्यों ने उसके पास आकर कहा,
यह सुनसान जगह है और बहुत देर भी हो चुकी है, सो भीड़ को विदा कर ताकि वे गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल ले लें।
किंतु यीशु ने उनसे कहा,
इन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम इन्हें कुछ खाने को दो।
उन्होंने उससे कहा,
हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों को छोड़कर और कुछ नहीं है।
यीशु ने कहा,
उन्हें मेरे पास ले आओ।
उसने भीड़ के लोगों से कहा कि वे घास पर बैठ जाएं। फिर उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर स्वर्ग की ओर देखा और भोजन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। फिर रोटी के टुकड़े तोड़े और उन्हें अपने शिष्यों को दे दिया। शिष्यों ने वे टुकड़े लोगों में बांट दिए। सभी ने छककर खाया। इसके बाद बचे हुए टुकड़ों से उसके शिष्यों ने 12 टोकरियां भरी। स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर वहां खाने वाले कोई 5,000 पुरुष थे। इसके तुरंत बाद यीशु ने अपने शिष्यों को नाव पर चढ़ाया और जब तक वह भीड़ को विदा करे उनसे गलील की झील के पार अपने से पहले ही जाने को कहा। भीड़ को विदा करके वह अकेले में प्रार्थना करने को पहाड़ पर चला गया। सांझ होने पर वह वहां अकेला था। तब तक नाव किनारे से मीलों दूर जा चुकी थी और लहरों में थपेड़े खाती डगमगा रही थी। सामने की हवा चल रही थी। सुबह कोई 3 और 6 बजे के बीच यीशु झील पर चलता हुआ उनके पास आया। उसके शिष्यों ने जब उसे झील पर चलते हुए देखा तो वह घबराए हुए आपस में कहने लगे,
यह तो कोई भूत है।
वे डर के मारे चीख उठे। यीशु ने तत्काल उनसे बात करते हुए कहा,
हिम्मत रखो, यह मैं हूँ, अब और मत डरो।
पतरस ने उत्तर देते हुए उससे कहा,
प्रभु, यदि यह तू है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने को कह।
यीशु ने कहा,
चला आ।
पतरस नाव से निकलकर पानी पर यीशु की तरफ चल पड़ा। उसने जब तेज हवा देखी तो वह घबराया। वह डूबने लगा और चिल्लाया,
प्रभु, मेरी रक्षा कर।
यीशु ने तत्काल उसके पास पहुंचकर उसे संभाल लिया और उससे बोला,
ओ अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया?
और वे नाव पर चढ़ आए। हवा थम गई। नाव पर के लोगों ने यीशु की उपासना की और कहा,
तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है।
सो झील पार करके वे गन्ने सरत के तट पर उतर गए। जब वहां रहने वालों ने यीशु को पहचाना तो उन्होंने उसके आने का समाचार आसपास सब कहीं भिजवा दिया, जिससे लोग जो रोगी थे उन सबको वहां ले आए और उससे प्रार्थना करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र का बस किनारा ही छू लेने दे। और जिन्होंने छू लिया वे सब पूरी तरह चंगे हो गए। मत्ती अध्याय 15। फिर कुछ फरीसी और यहूदी धर्मशास्त्री यरूशलेम से यीशु के पास आए और उससे पूछा,
तेरे अनुयायी हमारे पुरखों के रीति रिवाजों का पालन क्यों नहीं करते? वे खाना खाने से पहले अपने हाथ क्यों नहीं धोते?
यीशु ने उत्तर दिया,
अपने रीति रिवाजों के कारण तुम परमेश्वर के विधि को क्यों तोड़ते हो? क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा था, तू अपने माता पिता का आदर कर, और जो कोई अपने पिता या माता का अपमान करता है उसे अवश्य मार दिया जाना चाहिए। किंतु तुम कहते हो, जो कोई अपने पिता या अपनी माता से कहे, क्योंकि मैं अपना सब कुछ परमेश्वर को अर्पित कर चुका हूँ, इसलिए तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, इस तरह उसे अपने माता पिता का आदर करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार तुम अपने रीति रिवाजों के कारण परमेश्वर के आदेश को नकारते हो। ओ ढोंगियों, तुम्हारे बारे में यशायाह ने ठीक ही भविष्यवाणी की थी। उसने कहा था, यह लोग केवल होंठों से मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे सदा दूर रहता है। मेरे लिए उनकी उपासना व्यर्थ है, क्योंकि उनकी शिक्षा केवल लोगों द्वारा बनाए हुए सिद्धांत हैं।
उसने भीड़ को अपने पास बुलाया और उनसे कहा,
सुनो और समझो कि मनुष्य के मुख के भीतर जो जाता है वह उसे अपवित्र नहीं करता, बल्कि उसके मुंह से निकला हुआ शब्द उसे अपवित्र करता है।
तब यीशु के शिष्य उसके पास आए और बोले,
क्या तुझे पता है कि तेरी बात का फरीसियों ने बहुत बुरा माना है?
यीशु ने उत्तर दिया,
हर वह पौधा जिसे मेरे स्वर्ग में स्थित पिता की ओर से नहीं लगाया गया है उखाड़ दिया जाएगा। उन्हें छोड़ो, वे तो अंधों के अंधे नेता हैं। यदि एक अंधा दूसरे अंधे को राह दिखाता है तो वे दोनों ही गड्ढे में गिरते हैं।
तब पतरस ने उससे कहा,
हमें अपवित्रता संबंधी दृष्टांत कर समझा।
यीशु बोला,
क्या तुम अब भी नहीं समझते? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ किसी के मुंह में जाता है वह उसके पेट में पहुंचता है और फिर पखाने में निकल जाता है? किंतु जो मनुष्य के मुंह से बाहर आता है वह उसके मन से निकलता है, यही उसको अपवित्र करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, व्यभिचार, दुराचार, चोरी, झूठ और निंदा जैसे सभी बुराइयां मन से ही आती हैं। ये ही हैं जिनसे कोई अपवित्र बनता है। बिना हाथ धोए खाने से कोई अपवित्र नहीं होता।
फिर यीशु उस स्थान को छोड़कर सूर और सैदा की ओर चल पड़ा। वहां की एक कनानी स्त्री आई और चिल्लाने लगी,
हे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, मेरी पुत्री पर दुष्ट आत्मा बुरी तरह सवार है।
यीशु ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा, सो उसके शिष्य उसके पास आए और विनती करने लगे,
यह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, इसे दूर हटा।
यीशु ने उत्तर दिया,
मुझे केवल इसराइल के लोगों की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी और के लिए नहीं भेजा गया है।
तब उस स्त्री ने यीशु के सामने झुककर विनती की,
हे प्रभु मेरी रक्षा कर।
उत्तर में यीशु ने कहा,
यह उचित नहीं है कि बच्चों का खाना लेकर उसे घर के कुत्तों के आगे डाल दिया जाए।
वह बोली,
यह ठीक है प्रभु, किंतु अपनी स्वामी की मेज से गिरे हुए चूरे में से थोड़ा बहुत तो घर के कुत्ते ही खा ही लेते हैं।
तब यीशु ने कहा,
स्त्री तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जो तू चाहती है पूरा हो।
और तत्काल उसकी बेटी अच्छी हो गई। फिर यीशु वहां से चल पड़ा और झील गलील के किनारे पहुंचा। वह एक पहाड़ पर चढ़कर उपदेश देने बैठ गया। बड़ी बड़ी भीड़, लंगड़े, लूलों, अंधों, अपाहिजों, बहरे, गूंगों और ऐसे ही दूसरे रोगियों को लेकर उसके पास आने लगी। भीड़ ने उन्हें उसके चरणों में धरती पर डाल दिया और यीशु ने उन्हें चंगा कर दिया। इससे भीड़ के लोगों को यह देखकर कि बहरे गूंगे बोल रहे हैं, अपाहिज अच्छे हो गए, लंगड़े लूले चल फिर रहे हैं और अंधे अब देख पा रहे हैं, बड़ा अचरज हुआ। वे इस्राएल के परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तब यीशु ने अपने शिष्यों को पास बुलाया और कहा,
मुझे इस भीड़ पर तरस आ रहा है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से लगातार मेरे साथ हैं और इनके पास कुछ खाने को भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही नहीं भेजना चाहता, क्योंकि हो सकता है कि कहीं वे रास्ते में ही मूर्छित होकर न गिर पड़े।
तब उसके शिष्यों ने कहा,
इतनी बड़ी भीड़ के लिए ऐसी बियाबान जगह में इतना खाना हमें कहां से मिलेगा?
तब यीशु ने उनसे पूछा,
तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं?
उन्होंने कहा,
7 रोटियां और कुछ छोटी मछलियां।
यीशु ने भीड़ से धरती पर बैठने को कहा और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ी और अपने शिष्यों को देने लगा। फिर उसके शिष्यों ने उन्हें आगे लोगों में बांट दिया। लोग तब तक खाते रहे जब तक थक न गए। फिर उसके शिष्यों ने बचे हुए टुकड़ों से 60 टोकरियां भरी। औरतों और बच्चों को छोड़कर वहां 4,000 पुरुषों ने भोजन किया। भीड़ को विदा करके यीशु नाव में आ गया और मगदन को चला गया। मत्ती अध्याय 16। फिर फरीसी और सदूकी यीशु के पास आए। वे उसे परखना चाहते थे, सो उन्होंने उससे कोई चमत्कार करने को कहा, ताकि पता लग सके कि उसे परमेश्वर की अनुमति मिली हुई है। उसने उत्तर दिया,
सूरज छुपने पर तुम लोग कहते हो आज मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आसमान लाल है, और सूरज उगने पर तुम कहते हो आज अंधड़ आएगा क्योंकि आसमान धुंधला और लाल है। तुम आकाश के लक्षणों को पढ़ना जानते हो पर अपने समय के लक्षणों को नहीं पढ़ सकते। अरे दुष्ट और दुराचारी पीढ़ी के लोग, कोई चिन्ह देखना चाहते हैं पर उन्हें सिवाय योना के चिन्ह के कोई और दूसरा चिन्ह नहीं दिखाया जाएगा।
फिर वह उन्हें छोड़कर चला गया। यीशु के शिष्य झील के पार चले आए, पर वे रोटी लाना भूल गए। इस पर यीशु ने उनसे कहा,
चौकन्ने रहो और फरीसियों और सदूकियों के खमीर से बचे रहो।
वे आपस में सोच विचार करते हुए बोले,
हो सकता है उसने यह इसलिए कहा क्योंकि हम कोई रोटी साथ नहीं लाए।
वे क्या सोच रहे हैं, यीशु यह जानता था, सो वह बोला,
ओ अल्पविश्वासियों, तुम आपस में अपने पास रोटी नहीं होने के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्या तुम अब भी नहीं समझते या याद करते कि 5,000 लोगों के लिए वे 5 रोटियां और फिर कितनी टोकरियां भर तुमने उठाई थी? और क्या तुम्हें याद नहीं 4,000 के लिए वे 7 रोटियां और फिर कितनी टोकरियां भर कर तुमने उठाई थी? क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के बारे में नहीं कहा? मैंने तो तुम्हें फरीसियों और सदूकियों के खमीर से बचने को कहा है।
तब वे समझ गए कि रोटी के खमीर से नहीं बल्कि उसका मतलब फरीसियों और सदूकियों की शिक्षाओं से बचे रहने से है। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया तो उसने अपने शिष्यों से पूछा,
लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं?
वे बोले,
कुछ कहते हैं कि तू बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है,
और दूसरे कहते हैं कि तू एलिया है, और कुछ अन्य कहते हैं कि तू इर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है।
यीशु ने उनसे कहा,
और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं?
शमौन पतरस ने उत्तर दिया,
तू मसीह है, साक्षात परमेश्वर का पुत्र।
उत्तर में यीशु ने उससे कहा,
योना के पुत्र शमौन, तू धन्य है क्योंकि तुझे यह बात किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि स्वर्ग में स्थित मेरे परम पिता ने दर्शाई है। मैं कहता हूं कि तू पतरस है और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मृत्यु की शक्ति उस पर प्रबल नहीं होगी। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दे रहा हूं ताकि धरती पर जो कुछ तू बांधे वह परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग में बांधा जाए, और जो कुछ तू धरती पर छोड़े वह स्वर्ग में परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिया जाए।
फिर उसने अपने शिष्यों को कड़ा आदेश दिया कि वे किसी को यह न बताएं कि वह मसीह है। उस समय यीशु अपने शिष्यों को बताने लगा कि उसे यरूशलेम जाना चाहिए, जहां उसे यहूदी धर्मशास्त्रियों, बुजुर्ग यहूदी नेताओं और प्रमुख याजकों द्वारा यातनाएं पहुंचाकर मरवा दिया जाएगा। फिर तीसरे दिन वह मरे हुओं में से जी उठेगा। तब पतरस उसे एक तरफ ले गया और उसकी आलोचना करता हुआ उससे बोला,
हे प्रभु, परमेश्वर तुझ पर दया करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना हो।
फिर यीशु उसकी तरफ मुड़ा और बोला,
पतरस, मेरे रास्ते से हट जा, अरे शैतान, तू मेरे लिए एक अड़चन है क्योंकि तू परमेश्वर की तरह नहीं लोगों की तरह सोचता है।
फिर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा,
यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपने आप को भुलाकर अपना क्रूस स्वयं उठाए और मेरे पीछे हो ले। जो कोई अपना जीवन बचाना चाहता है उसे वह खोना होगा, किंतु जो कोई मेरे लिए अपना जीवन खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि कोई अपना जीवन देकर सारा संसार भी पा जाए तो उसे क्या लाभ? अपने जीवन को फिर से पाने के लिए कोई भला क्या दे सकता है? मनुष्य का पुत्र दूतों सहित अपने परम पिता की महिमा के साथ आने वाला है, जो हर किसी को उसके कर्मों का फल देगा। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, यहां कुछ ऐसे हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते न देख लें।
मत्ती अध्याय 17। 6 दिन बाद यीशु पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर एकांत में ऊंचे पहाड़ पर गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया, उसका मुख सूरज के समान दमक उठा और उसके वस्त्र ऐसे चमचमाने लगे जैसे प्रकाश। फिर अचानक मूसा और इलियाह उनके सामने प्रकट हुए और यीशु से बात करने लगे। यह देखकर पतरस यीशु से बोला,
प्रभु अच्छा है कि हम यहाँ हैं। यदि तू चाहे तो मैं यहाँ 3 मंडप बना दूँ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक इलियाह के लिए।
पतरस अभी बात कर ही रहा था कि एक चमकते हुए बादल ने आकर उन्हें ढक लिया और बादल से आकाशवाणी हुई,
यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो।
जब शिष्यों ने यह सुना तो वे इतने सहम गए कि धरती पर औंधे मुंह गिर पड़े। तब यीशु उनके पास गया और उन्हें छूते हुए बोला,
डरो मत, खड़े हो।
जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो वहां बस यीशु को ही पाया। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें आदेश दिया,
जो कुछ तुमने देखा है तब तक किसी को मत बताना जब तक मनुष्य के पुत्र को मरे हुओं में से फिर जिला न दिया जाए।
फिर उसके शिष्यों ने उससे पूछा,
यहूदी धर्मशास्त्री फिर क्यों कहते हैं एलिय्याह का पहले आना निश्चित है?
उत्तर देते हुए उसने उनसे कहा,
एलिय्याह आ रहा है, वह हर वस्तु को व्यवस्थित कर देगा। किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिय्याह तो अब तक आ चुका है पर लोगों ने उसे पहचाना नहीं और उसके साथ जैसा चाहा वैसा किया। उनके द्वारा मनुष्य के पुत्र को भी वैसे ही सताया जाने वाला है।
तब उसके शिष्य समझे कि उसने उनसे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में कहा था। जब यीशु भीड़ में वापस आया तो एक व्यक्ति उसके पास आया और उसे दंडवत प्रणाम करके बोला,
हे प्रभु, मेरे बेटे पर दया कर, उसे मिर्गी आती है, वो बहुत तड़पता है, वो आग में या पानी में अक्सर गिरता पड़ता रहता है। मैं उसे तेरे शिष्यों के पास लाया पर वे उसे अच्छा नहीं कर पाए।
उत्तर में यीशु ने कहा,
अरे भटके हुए अविश्वासी लोगों, मैं कितने समय तुम्हारे साथ और रहूंगा? कितने समय मैं यूं ही तुम्हारे साथ रहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ।
फिर यीशु ने दुष्टात्मा को आदेश दिया और वह उसमें से बाहर निकल आई और वह लड़का तत्काल अच्छा हो गया। फिर उसके शिष्यों ने अकेले में यीशु के पास जाकर पूछा,
हम इस दुष्ट आत्मा को बाहर क्यों नहीं निकाल पाए?
यीशु ने उन्हें बताया,
क्योंकि तुम में विश्वास की कमी है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि तुम में राई के बीज जितना भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकते हो, यहाँ से हटकर वहाँ चला जा, और वह चला जाएगा, तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं होगा।
जब यीशु के शिष्य आए और उसके साथ गलील में मिले तो यीशु ने उनसे कहा,
मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के द्वारा ही पकड़वाया जाने वाला है, जो उसे मार डालेंगे, किंतु तीसरे दिन वह फिर जी उठेगा।
इस पर यीशु के शिष्य बहुत व्याकुल हुए। जब यीशु और उसके शिष्य कफरनहूम में आए तो मंदिर का 2 दरम कर वसूल करने वाले पतरस के पास आए और बोले,
क्या तेरा गुरु मंदिर का कर नहीं देता?
पतरस ने उत्तर दिया।
हाँ वह देता है।
और घर में चला आया। पतरस से बोलने के पहले ही यीशु बोल पड़ा। उसने कहा,
शमौन तेरा क्या विचार है? धरती के राजा किससे चुंगी और कर लेते हैं, स्वयं अपने बच्चों से या दूसरों के बच्चों से?
पतरस ने उत्तर दिया,
दूसरे के बच्चों से।
तब यीशु ने उससे कहा,
यानी उसके बच्चों को छूट रहती है, पर हम उन लोगों को नाराज ना करें, इसलिए झील पर जा और अपना कांटा फेंक, और फिर जो पहली मछली पकड़ में आए उसका मुंह खोलना, तुझे 4 दरम का सिक्का मिलेगा, उसे लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे देना।
मत्ती अध्याय 18। तब यीशु के शिष्यों ने उसके पास आकर पूछा,
स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है?
तब यीशु ने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उसे उनके सामने खड़ा करके कहा,
मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जब तक कि तुम लोग बदलोगे नहीं और बच्चों के समान नहीं बन जाओगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे। इसलिए अपने आप को जो कोई इस बच्चे के समान नम्र बनाता है, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है, और जो कोई ऐसे बालक जैसे व्यक्ति को मेरे नाम में स्वीकार करता है, वह मुझे स्वीकार करता है। किंतु जो मुझ में विश्वास करने वाले मेरे किसी ऐसे नम्र अनुयायी के रास्ते की बाधा बनता है, अच्छा हो कि उसके गले में एक चक्की का पाट लटकाकर उसे समुद्र की गहराई में डुबो दिया जाए। बाधाओं के कारण मुझे संसार के लोगों के लिए खेद है, पर बाधाएं तो आएंगी ही, किंतु खेद तो मुझे उस पर है जिसके द्वारा बाधाएं आती हैं। इसलिए यदि तेरा हाथ या तेरा पैर तेरे लिए बाधा बने तो उसे काट फेंक, क्योंकि स्वर्ग में बिना हाथ या बिना पैर के अनंत जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए अधिक अच्छा है, बजाय इसके कि दोनों हाथों और दोनों पैरों समेत तुझे नरक की कभी न बुझने वाली आग में डाल दिया जाए। यदि तेरी आंख तेरे लिए बाधा बने तो उसे बाहर निकाल कर फेंक दे, क्योंकि स्वर्ग में काना होकर अनंत जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए अधिक अच्छा है, बजाय इसके कि दोनों आंखों समेत तुझे नरक की आग में डाल दिया जाए। सो देखो, मेरे इन मासूम अनुयायियों में से किसी को भी तुच्छ मत समझना। मैं तुम्हें बताता हूं कि उनके रक्षक स्वर्ग दूतों की पहुंच स्वर्ग में मेरे परम पिता के पास लगातार रहती है। बता तू क्या सोचता है, यदि किसी के पास 100 भेड़े हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह दूसरी 99 भेड़ों को पहाड़ी पर ही छोड़कर उस एक खोई भेड़ को खोजने नहीं जाएगा? वह निश्चय ही जाएगा, और जब उसे वह मिल जाएगी, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, तो वह दूसरी 99 की बजाय जो खोई नहीं थी इसे पाकर अधिक प्रसन्न होगा। इसी तरह स्वर्ग में स्थित तुम्हारा पिता क्या नहीं चाहता कि मेरे इन अबोध अनुयायियों में से कोई एक भी न भटके? यदि तेरा बंधु तेरे साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो अकेले में जाकर आपस में ही उसे उसका दोष बता। यदि वह तेरी सुन ले तो तूने अपने बंधु को फिर जीत लिया, पर यदि वह तेरी न सुने तो 2-1 को अपने साथ ले जा, ताकि हर बात की 2-3 गवाही हो सके। यदि वह उनको भी न सुने तो कलीसिया को बता दे, और यदि वह कलीसिया की भी न माने तो फिर तू उससे ऐसे व्यवहार कर जैसे वह विधर्मी हो या कर वसूलने वाला हो। मैं तुम्हें सत्य बताता हूं, जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में प्रभु के द्वारा बांधा जाएगा, और जिस किसी को तुम धरती पर छोड़ोगे स्वर्ग में परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिया जाएगा। मैं तुझे यह भी बताता हूं कि इस धरती पर यदि तुम में से कोई 2 सहमत होकर स्वर्ग में स्थित मेरे पिता से कुछ मांगेंगे तो वह तुम्हारे लिए उसे पूरा करेगा, क्योंकि जहां मेरे नाम पर 2 या 3 लोग मेरे अनुयायी के रूप में इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके साथ हूं।
फिर पतरस यीशु के पास गया और बोला,
प्रभु मुझे अपने भाई को कितनी बार अपने प्रति अपराध करने पर भी क्षमा कर देना चाहिए? यदि वह 7 बार अपराध करे तो भी?
यीशु ने कहा,
न केवल 7 बार बल्कि मैं तुझे बताता हूँ, तुझे उसे 7 बार के 77 गुना तक क्षमा करते रहना चाहिए। सो स्वर्ग के राज्य की तुलना उस राजा से की जा सकती है जिसने अपने दासों से हिसाब चुकता करने की सोची थी। जब उसने हिसाब लेना शुरू किया तो उसके सामने एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया जिस पर 10,000,000 रुपया निकलता था, पर उसके पास चुकाने का कोई साधन नहीं था। उसके स्वामी ने आज्ञा दी कि उस दास को उसकी घरवाली, उसके बाल बच्चों और जो कुछ उसका माल असबाब है सब समेत बेचकर कर्ज चुका दिया जाए। तब उसका दास उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, धीरज धरो, मैं सब कुछ चुका दूंगा। इस पर स्वामी को उस दास पर दया आ गई, उसने उसका कर्जा माफ करके उसे छोड़ दिया। फिर जब वह दास वहां से जा रहा था तो उसे उसका एक साथी दास मिला जिसे उसे कुछ रुपये देने थे। उसने उसका गिरहबान पकड़ लिया और उसका गला घोटते हुए बोला, जो तुझे मेरा देना है लौटा दे। इस पर उसका साथी दास उसके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर कहने लगा, धीरज धर, मैं चुका दूंगा। पर उसने मना कर दिया। इतना ही नहीं, उसने उसे तब तक के लिए जब तक वह उसका कर्ज न चुका दे जेल भी भिजवा दिया। दूसरे दास इस सारी घटना को देखकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने जो कुछ घटा था सब अपने स्वामी को जाकर बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसे बुलाया और कहा, अरे नीच दास, मैंने तेरा वह सारा कर्ज माफ कर दिया क्योंकि तूने मुझसे दया की भीख मांगी थी। क्या तुझे भी अपने साथी दास पर दया नहीं दिखानी चाहिए थी जैसे मैंने तुम पर दया की थी? सो उसका स्वामी बहुत बिगड़ा और उसे तब तक दंड भुगताने के लिए सौंप दिया जब तक समूचा कर्ज चुकता न हो जाए। सो जब तक तुम अपने भाई बंदों को अपने मन से क्षमा न कर दो, मेरा स्वर्गीय परम पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा।
मत्ती अध्याय 19। ये बातें कहने के बाद वह गलील से लौटकर यहूदिया के क्षेत्र में यर्दन नदी के पार चला गया। एक बड़ी भीड़ वहां उसके पीछे होली, जिसे उसने चंगा किया। उसे परखने के जतन में कुछ फरीसी उसके पास पहुंचे और बोले,
क्या यह उचित है कि कोई अपनी पत्नी को किसी भी कारण से तलाक दे सकता है?
उत्तर देते हुए यीशु ने कहा,
क्या तुमने शास्त्र में नहीं पढ़ा कि जगत को रचने वाले ने प्रारंभ में उन्हें एक स्त्री और एक पुरुष के रूप में रचा था और कहा था, इसी कारण अपने माता पिता को छोड़कर पुरुष अपनी पत्नी के साथ दो होते हुए भी एक शरीर होकर रहेगा। सो वे दो नहीं रहते बल्कि एक रूप हो जाते हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे किसी भी मनुष्य को अलग नहीं करना चाहिए।
वे बोले,
फिर मूसा ने यह क्यों निर्धारित किया है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है? शर्त यह है कि वह उसे तलाक नामा लिख कर दे।
यीशु ने उनसे कहा,
मूसा ने यह विधान तुम लोगों के मन की जड़ता के कारण दिया था, किंतु प्रारंभ में ऐसी रीति नहीं थी। तो मैं तुमसे कहता हूं कि जो व्यभिचार को छोड़कर अपनी पत्नी को किसी और कारण से त्यागता है और किसी दूसरी स्त्री को ब्याहता है तो वह व्यभिचार करता है।
इस पर उसके शिष्यों ने उससे कहा,
यदि एक स्त्री और एक पुरुष के बीच ऐसी स्थिति है तो किसी को ब्याह ही नहीं करना चाहिए।
फिर यीशु ने उनसे कहा,
हर कोई तो इस उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकता, इसे बस वे ही ग्रहण कर सकते हैं जिनको इसकी क्षमता प्रदान की गई है। कुछ ऐसे हैं जो अपनी मां के गर्भ से ही नपुंसक पैदा हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जो लोगों द्वारा नपुंसक बना दिए गए हैं, और अंत में कुछ ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के कारण विवाह नहीं करने का निश्चय किया है। जो इस उपदेश को ले सकता है ले।
फिर लोग कुछ बालकों को यीशु के पास लाए कि वह उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दे और उनके लिए प्रार्थना करे, किंतु उसके शिष्यों ने उन्हें डांटा। इस पर यीशु ने कहा,
बच्चों को रहने दो, उन्हें मत रोको, मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है।
फिर उसने बच्चों के सिर पर अपना हाथ रखा और वहां से चल दिया। वहीं एक व्यक्ति था, वह यीशु के पास आया और बोला,
गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या अच्छा काम करना चाहिए?
यीशु ने उससे कहा,
अच्छा क्या है, इसके बारे में तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? क्योंकि अच्छा तो केवल एक ही है। फिर भी यदि तू अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो तू आदेशों का पालन कर।
उसने यीशु से पूछा,
कौन से आदेश?
तब यीशु बोला,
हत्या मत कर, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही मत दे, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जैसे तू अपने आप को प्यार करता है वैसे ही अपने पड़ोसी से भी प्यार कर।
युवक ने यीशु से पूछा,
मैंने इन सब बातों का पालन किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है?
यीशु ने उससे कहा,
यदि तू संपूर्ण बनना चाहता तो जा और जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर धन गरीबों में बांट दे, ताकि स्वर्ग में तुझे धन मिल सके, फिर आ और मेरे पीछे हो ले।
किंतु जब उस नौजवान ने यह सुना तो वह दुखी होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनवान था। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा,
मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि एक धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाना कठिन है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि किसी धनवान व्यक्ति के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने से एक ऊंट का सुई के नकवे से निकल जाना आसान है।
जब उसके शिष्यों ने यह सुना तो अचरज से भर कर पूछा,
फिर किसका उद्धार हो सकता है?
यीशु ने उन्हें देखते हुए कहा,
मनुष्यों के लिए यह असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है।
उत्तर में तब पतरस ने उससे कहा,
देख, हम सब कुछ त्याग कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा?
यीशु ने उनसे कहा,
मैं तुम लोगों से सत्य कहता हूँ कि नए युग में जब मनुष्य का पुत्र अपने प्राप्त सिंहासन पर विराजेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर परमेश्वर के लोगों का न्याय करोगे, और मेरे लिए जिसने भी घर बार या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बच्चों या खेतों को त्याग दिया है वह 100 गुना अधिक पाएगा और अनंत जीवन का भी अधिकारी बनेगा, किंतु बहुत से जो अब पहले हैं अंतिम हो जाएंगे, और जो अंतिम हैं पहले हो जाएंगे।
मत्ती अध्याय 20।
स्वर्ग का राज्य एक जमींदार के समान है जो सुबह सवेरे अपने अंगूर के बगीचों के लिए मजदूर लाने को निकला। उसने चांदी के 1 रुपये पर मजदूर रखकर उन्हें अपने अंगूर के बगीचे में काम करने भेज दिया। 9 बजे के आसपास जमींदार फिर घर से निकला और उसने देखा कि कुछ लोग बाजार में इधर उधर यूं ही बेकार खड़े हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम भी मेरे अंगूर के बगीचे में जाओ, मैं तुम्हें जो कुछ उचित होगा दूंगा। सो वे भी बगीचे में काम करने चले गए। फिर कोई 12 बजे और दोबारा 3 बजे के आसपास उसने वैसा ही किया। कोई 5 बजे वह फिर अपने घर से गया और कुछ लोगों को बाजार में इधर उधर खड़े देखा। उसने उनसे पूछा, तुम यहां दिन भर बेकार ही क्यों खड़े रहते हो? उन्होंने उससे कहा, क्योंकि हमें किसी ने मजदूरी पर नहीं रखा। उसने उनसे कहा, तुम भी मेरे अंगूर के बगीचे में चले जाओ। जब सांझ हुई तो अंगूर के बगीचे के मालिक ने अपने प्रधान कर्मचारी को कहा, मजदूरों को बुलाकर अंतिम मजदूर से शुरू करके जो पहले लगाए गए थे उन तक सबकी मजदूरी चुका दो। सो वे मजदूर जो 5 बजे लगाए थे आए और उनमें से हर किसी को चांदी का 1 रुपया मिला। फिर जो पहले लगाए गए थे वे आए, उन्होंने सोचा उन्हें कुछ अधिक मिलेगा, पर उनमें से भी हर एक को 1 ही चांदी का रुपया मिला। रुपया तो उन्होंने ले लिया, पर जमींदार से शिकायत करते हुए उन्होंने कहा, जो बाद में लगे थे उन्होंने बस 1 घंटा काम किया और तूने हमें भी उतना ही दिया जितना उन्हें, जबकि हमने सारे दिन चमचमाती धूप में मेहनत की। उत्तर में उनमें से किसी एक से जमींदार ने कहा, दोस्त मैंने तेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया है, क्या हमने तय नहीं किया था कि मैं तुम्हें चांदी का 1 रुपया दूंगा? जो तेरा बनता है ले और चला जा, मैं सबसे बाद में रखे गए इसको भी उतनी ही मजदूरी देना चाहता हूँ जितनी तुझे दे रहा हूँ। क्या मैं अपने धन का जो चाहूँ वह करने का अधिकार नहीं रखता? मैं अच्छा हूँ, क्या तू इससे जलता है? इस प्रकार अंतिम पहले हो जाएंगे और पहले अंतिम हो जाएंगे।
जब यीशु अपने 12 शिष्यों के साथ यरूशलेम जा रहा था तो वह उन्हें एक तरफ ले गया और चलते चलते उनसे बोला,
सुनो हम यरूशलेम पहुंचने को हैं। मनुष्य का पुत्र वहां प्रमुख याजकों और यहूदी धर्मशास्त्रियों के हाथों सौंप दिया जाएगा, वे उसे मृत्युदंड के योग्य ठहराएंगे, फिर उसका उपहास करवाने और कोड़े लगवाने को उसे गैर यहूदियों को सौंप देंगे, फिर उसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा, किंतु 3रे दिन वह फिर जी उठेगा।
फिर जब्दी के बेटों की मां अपने बेटों समेत यीशु के पास पहुंची और उसने झुककर प्रार्थना करते हुए उससे कुछ मांगा। यीशु ने उससे पूछा,
तू क्या चाहती है?
वह बोली,
मुझे वचन दे कि मेरे ये दोनों बेटे तेरे राज्य में एक तेरी दाहिनी ओर और दूसरा तेरी बाईं ओर बैठे।
यीशु ने उत्तर दिया,
तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। क्या तुम यातनाओं का वह प्याला पी सकते हो जिसे मैं पीने वाला हूँ?
उन्होंने उससे कहा,
हाँ हम पी सकते हैं।
यीशु उनसे बोला,
निश्चय ही तुम वह प्याला पियोगे, किंतु मेरे दाएं और बाएं बैठने का अधिकार देने वाला मैं नहीं हूँ। यहाँ बैठने का अधिकार तो उनका है जिनके लिए यह मेरे पिता द्वारा सुरक्षित किया जा चुका है।
जब बाकी 10 शिष्यों ने यह सुना तो वे उन दोनों भाइयों पर बहुत बिगड़े। तब यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा,
तुम जानते हो कि गैर यहूदी राजा लोगों पर अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं और उनके महत्वपूर्ण नेता लोगों पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं, किंतु तुम्हारे बीच ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम में जो बड़ा बनना चाहे तुम्हारा सेवक बने, और तुम में से जो कोई पहला बनना चाहे उसे तुम्हारा दास बनना होगा। तुम्हें मनुष्य के पुत्र जैसा ही होना चाहिए, जो सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के लिए अपने प्राणों की फिरौती देने आया है।
जब वे यरीहो नगर से जा रहे थे, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली। वहां सड़क किनारे 2 अंधे बैठे थे। जब उन्होंने सुना कि यीशु वहां से जा रहा है, वे चिल्लाए,
प्रभु दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर।
इस पर भीड़ ने उन्हें धमकाते हुए चुप रहने को कहा, पर वे और अधिक चिल्लाए,
प्रभु दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर।
फिर यीशु रुका और उनसे बोला,
तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं?
उन्होंने उससे कहा,
प्रभु हम चाहते हैं कि हम देख सके।
यीशु को उन पर दया आई, उसने उनकी आंखों को छुआ और तुरंत ही वे फिर देखने लगे, वे उसके पीछे हो लिए। मत्ती अध्याय 21। यीशु और उसके अनुयायी जब यरूशलेम के पास जैतून पर्वत के निकट बैतफगे पहुंचे तो यीशु ने अपने 2 शिष्यों को यह आदेश देकर भेजा कि
अपने ठीक सामने के गांव में जाओ और वहां जाते ही तुम्हें एक गधी बंधी मिलेगी, उसके साथ उसका बच्चा भी होगा। उन्हें बांधकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो उससे कहना, प्रभु को इनकी आवश्यकता है, वह जल्दी ही इन्हें लौटा देगा।
ऐसा इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ता का यह वचन पूरा हो।
सियोन की नगरी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आ रहा है, वह विनयपूर्ण है, वह गधी पर सवार है, हाँ गधी के बच्चे पर, जो एक श्रमिक पशु का बच्चा है।
सो उसके शिष्य चले गए और वैसा ही किया जैसा उन्हें यीशु ने बताया था। वे गधी और उसके बछेरे को ले आए और उन पर अपने वस्त्र डाल दिए, क्योंकि यीशु को बैठना था। भीड़ में बहुत से लोगों ने अपने वस्त्र राह में बिछा दिए और दूसरे लोग पेड़ों से टहनियां काट लाए और उन्हें मार्ग में बिछा दिया। जो लोग उनके आगे चल रहे थे और जो लोग उनके पीछे चल रहे थे, सब पुकार कर कह रहे थे,
होशाना, धन्य है दाऊद का वह पुत्र जो आ रहा है, प्रभु के नाम पर धन्य है प्रभु जो स्वर्ग में विराजा।
सो जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो समूचे नगर में हलचल मच गई। लोग पूछने लगे,
ये कौन है?
लोग ही जवाब दे रहे थे,
यह गलील के नासरत का नबी यीशु है।
फिर यीशु मंदिर के अहाते में आया और उसने मंदिर के अहाते में जो लोग खरीद बिक्री कर रहे थे उन सबको बाहर खदेड़ दिया। उसने पैसों की लेन देन करने वालों की चौकियों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों के तख्त पलट दिए। वह उनसे बोला,
शास्त्र कहते हैं मेरा घर प्रार्थना गृह कहलाएगा, किंतु तुम इसे डाकुओं का अड्डा बना रहे हो।
मंदिर में कुछ अंधे, लंगड़े, लूले उसके पास आए, जिन्हें उसने चंगा कर दिया। तब प्रमुख याजकों और यहूदी धर्म शास्त्रियों ने उन अद्भुत कामों को देखा जो उसने किए थे और मंदिर में बच्चों को ऊंचे स्वर में कहते सुना,
होशन्ना, दाऊद का वह पुत्र धन्य है।
तो वे बहुत क्रोधित हुए और उससे पूछा,
तू सुनता है वे क्या कह रहे हैं?
यीशु ने उनसे कहा,
हाँ सुनता हूँ, क्या धर्मशास्त्र में तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, तूने बालकों और दूध पीते बच्चों तक से स्तुति करवाई है।
फिर उन्हें वहीं छोड़कर वह यरूशलेम नगर से बाहर बैतिन्याह को चला गया, जहां उसने रात बिताई। अगले दिन अलग सुबह जब वह नगर को वापस लौट रहा था तो उसे भूख लगी। राह किनारे उसने अंजीर का एक पेड़ देखा, सो वह उसके पास गया, पर उसे उस पर पत्तों को छोड़ और कुछ नहीं मिला। सो उसने पेड़ से कहा,
तुझ पर आगे कभी फल न लगे।
और वह अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। जब शिष्यों ने वह देखा तो अचरज के साथ पूछा,
यह अंजीर का पेड़ इतनी जल्दी कैसे सूख गया?
यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा,
मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि तुम में विश्वास है और तुम संदेह नहीं करते तो तुम न केवल वह कर सकते हो जो मैंने अंजीर के पेड़ का किया, बल्कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो, उठ और अपने आप को सागर में डुबो दे, तो वही हो जाएगा। और प्रार्थना करते हुए तुम जो कुछ मांगो, यदि तुम्हें विश्वास है तो तुम पाओगे।
जब यीशु मंदिर में जाकर उपदेश दे रहा था तो प्रमुख याजकों और यहूदी बुजुर्गों ने पास जाकर उससे पूछा,
ऐसी बातें तू किस अधिकार से करता है और यह अधिकार तुझे किसने दिया?
उत्तर में यीशु ने उनसे कहा,
मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, यदि उसका उत्तर तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं ये बातें किस अधिकार से करता हूँ। बताओ, यूहन्ना को बपतिस्मा कहाँ से मिला, परमेश्वर से या मनुष्य से?
वे आपस में विचार करते हुए कहने लगे,
यदि हम कहते हैं परमेश्वर से तो यह हमसे पूछेगा, फिर तुम उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? किंतु यदि हम कहते हैं मनुष्य से तो हमें लोगों का डर है, क्योंकि वे यूहन्ना को एक नबी मानते हैं।
सो उत्तर में उन्होंने यीशु से कहा,
हमें नहीं पता।
इस पर यीशु उनसे बोला,
अच्छा तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये बातें मैं किस अधिकार से करता हूँ। अच्छा बताओ, तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? एक व्यक्ति के दो पुत्र थे। वह बड़े के पास गया और बोला, पुत्र आज मेरे अंगूरों के बगीचे में जा और काम कर। किंतु पुत्र ने उत्तर दिया, मेरी इच्छा नहीं है। पर बाद में उसका मन बदल गया और वह चला गया। फिर वह पिता दूसरे बेटे के पास गया और उससे भी वैसे ही कहा। उत्तर में बेटे ने कहा, जी हाँ, मगर वह गया नहीं। बताओ, इन दोनों में से जो पिता चाहता था किसने किया?
उन्होंने कहा, बड़े ने। यीशु ने उनसे कहा,
मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, कर वसूलने वाले और वेश्याएं परमेश्वर के राज्य में तुमसे पहले जाएंगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना तुम्हें जीवन का सही रास्ता दिखाने आया और तुमने उसमें विश्वास नहीं किया, किंतु कर वसूलने वालों और वेश्याओं ने उसमें विश्वास किया। तुमने जब यह देखा तो भी बाद में न मन फिराया और न ही उस पर विश्वास किया। एक और दृष्टांत सुनो। एक जमींदार था, उसने अंगूरों का एक बगीचा लगाया और उसके चारों ओर बाड़ लगा दी। फिर अंगूरों का रस निकालने का गरट लगाने को एक गड्ढा खोदा और रखवाली के लिए एक मीनार बनाई। फिर उसे बटाई पर देकर वह यात्रा पर चला गया। जब अंगूर उतारने का समय आया तो बगीचे के मालिक ने किसानों के पास अपने दास भेजे ताकि वे अपने हिस्से के अंगूर ले आएं। किंतु किसानों ने उसके दासों को पकड़ लिया, किसी की पिटाई की, किसी पर पत्थर फेंके और किसी को तो मार ही डाला। एक बार फिर उसने पहले से और अधिक दास भेजे। उन किसानों ने उनके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया। बाद में उसने उनके पास अपने बेटे को भेजा। उसने कहा, वे मेरे बेटे का तो मान रखेंगे ही। किंतु उन किसानों ने जब उसके बेटे को देखा तो वे आपस में कहने लगे, यह तो उसका उत्तराधिकारी है, आओ इसे मार डालें और उसका उत्तराधिकार हथिया लें। सो उन्होंने उसे पकड़कर बगीचे के बाहर धकेल दिया और मार डाला। तुम क्या सोचते हो, जब वहां अंगूरों के बगीचे का मालिक आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा?
उन्होंने उससे कहा,
क्योंकि वे निर्दय थे इसलिए वह उन्हें बेरहमी से मार डालेगा और अंगूरों के बगीचे को दूसरे किसानों को बटाई पर दे देगा, जो फसल आने पर उसे उसका हिस्सा देंगे।
यीशु ने उनसे कहा,
क्या तुमने शास्त्र का वह वचन नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को मकान बनाने वालों ने बेकार समझा वही कोने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पत्थर बन गया। ऐसा प्रभु के द्वारा किया गया जो हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर का राज्य तुमसे छीन लिया जाएगा और वह उन लोगों को दे दिया जाएगा जो उसके राज्य के अनुसार बर्ताव करेंगे। जो इस चट्टान पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और यदि यह चट्टान किसी पर गिरेगी तो उसे रौंद डालेगी।
जब प्रमुख याजकों और फरीसियों ने यीशु की दृष्टांत कथाएं सुनी तो वे ताड़ गए कि वह उन्हीं के बारे में कह रहा था। सो उन्होंने उसे पकड़ने का जतन किया, किंतु वे लोगों से डरते थे क्योंकि लोग यीशु को नबी मानते थे। मत्ती अध्याय 22। एक बार फिर यीशु उनसे दृष्टांत कथाएं कहने लगा। वह बोला,
स्वर्ग का राज्य उस राजा के जैसा है जिसने अपने बेटे के ब्याह पर दावत दी। राजा ने अपने दासों को भेजा कि वे उन लोगों को बुला लाएं जिन्हें विवाह भोज पर न्योता दिया गया है, किंतु वे लोग नहीं आए। उसने अपने सेवकों को फिर भेजा। उसने कहा कि जिन लोगों को विवाह भोज पर बुलाया गया है उनसे कहो, देखो मेरी दावत तैयार है, मेरे सांडों और मोटे ताजे पशुओं को काटा जा चुका है, सब कुछ तैयार है, ब्याह की दावत में आ जाओ। पर लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे चले गए। कोई अपने खेतों में काम करने चला गया तो कोई अपने काम धंधे पर, और कुछ लोगों ने तो राजा के सेवकों को पकड़कर उनके साथ मारपीट की और उन्हें मार डाला। सो राजा ने क्रोधित होकर अपने सैनिक भेजे, उन्होंने उन हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया और उनके नगर में आग लगा दी। फिर राजा ने सेवकों से कहा, विवाह भोज तैयार है, किंतु जिन्हें बुलाया गया था वे अयोग्य सिद्ध हुए, इसलिए गली के नुक्कड़ों पर जाओ और तुम जिसे भी पाओ ब्याह की दावत पर बुला लाओ। फिर सेवक गलियों में गए और जो भी भले बुरे लोग उन्हें मिले वे उन्हें बुला लाए और शादी का महल मेहमानों से भर गया। किंतु जब मेहमानों को देखने राजा आया तो वहां उसने एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसने विवाह के वस्त्र नहीं पहने थे। राजा ने उससे कहा, हे मित्र, विवाह के वस्त्र पहने बिना तू यहाँ भीतर कैसे आ गया? पर वह व्यक्ति चुप रहा। इस पर राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में फेंक दो, जहाँ लोग रोते और दांत पीसते होंगे, क्योंकि बुलाए तो बहुत गए हैं पर चुने हुए थोड़े से हैं।
फिर फरीसियों ने जाकर एक सभा बुलाई जिससे वे इस बात का आपस में विचार विमर्श कर सकें कि यीशु को उसकी अपनी ही कही किसी बात में कैसे फंसाया जा सकता है। उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा। उन लोगों ने यीशु से कहा,
गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है, तू सचमुच परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा देता है, और तब कोई क्या सोचता है? तू इसकी चिंता नहीं करता, क्योंकि तू किसी व्यक्ति की हैसियत पर नहीं जाता। सो हमें बता, तेरा क्या विचार है कि सम्राट कैसर को कर चुकाना उचित है कि नहीं?
यीशु उनके बुरे इरादों को ताड़ गया, सो वह बोला,
ओ कपटियों, तुम मुझे क्यों परखना चाहते हो? मुझे कोई दीनार दिखाओ जिससे तुम कर चुकाते हो।
सो वे उसके पास दीनार ले आए। तब उसने उनसे कहा,
इस पर किसकी मूरत और लेख खुदे हैं?
उन्होंने उससे कहा,
महाराजा कैसर के।
तब उसने उनसे कहा,
अच्छा, तो फिर जो महाराजा कैसर का है उसे महाराजा कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को।
यह सुनकर वे अचरज से भर गए और उसे छोड़कर चले गए। उसी दिन कुछ सदूकी जो पुनरुत्थान को नहीं मानते थे उसके पास आए और उससे पूछा,
गुरु, मूसा के उपदेश के अनुसार यदि बिना बाल बच्चों के कोई मर जाए तो उसका भाई निकट संबंधी होने के नाते उसकी विधवा से ब्याह करे और अपने भाई का वंश बढ़ाने के लिए संतान पैदा करे। अब मानो हम 7 भाई हैं, पहले का ब्याह हुआ और बाद में उसकी मृत्यु हो गई, फिर क्योंकि उसके कोई संतान नहीं हुई इसलिए उसके भाई ने उसकी पत्नी को अपना लिया। जब तक कि 7 भाई मर नहीं गए, दूसरे तीसरे भाइयों के साथ भी वैसा ही हुआ और सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। अब हमारा पूछना यह है कि अगले जीवन में उन 7 में से वह किसकी पत्नी होगी, क्योंकि उसे 7 ने ही अपनाया था।
उत्तर देते हुए यीशु ने उनसे कहा,
तुम भूल करते हो, क्योंकि तुम शास्त्रों को और परमेश्वर की शक्ति को नहीं जानते। तुम्हें समझना चाहिए कि पुनर्जीवन में लोग न तो शादी करेंगे और न ही कोई शादी में दिया जाएगा, बल्कि वे स्वर्ग के दूतों के समान होंगे। इसी सिलसिले में तुम्हारे लाभ के लिए परमेश्वर ने मरे हुओं के पुनरुत्थान के बारे में जो कहा है, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा? उसने कहा था, मैं इब्राहीम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर है।
जब लोगों ने यह सुना तो उसके उपदेश पर वे बहुत चकित हो गए। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने अपने उत्तर से सदूकियों को चुप करा दिया है तो वे सब इकट्ठे हुए। उनमें से एक यहूदी धर्मशास्त्री ने यीशु को फंसाने के उद्देश्य से उससे पूछा,
गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ा आदेश कौन सा है?
यीशु ने उससे कहा,
संपूर्ण मन से, संपूर्ण आत्मा से और संपूर्ण बुद्धि से तुझे अपने परमेश्वर प्रभु से प्रेम करना चाहिए। यह सबसे पहला और सबसे बड़ा आदेश है। फिर ऐसा ही दूसरा आदेश यह है, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करता है। संपूर्ण व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के ग्रंथ इन्हीं दो आदेशों पर टिके हैं।
जब फरीसी अभी इकट्ठे ही थे कि यीशु ने उनसे एक प्रश्न पूछा,
मसीह के बारे में तुम क्या सोचते हो कि वह किसका बेटा है?
उन्होंने उससे कहा,
दाऊद का।
यीशु ने उनसे पूछा,
फिर आत्मा से प्रेरित दाऊद ने उसे प्रभु कहते हुए यह क्यों कहा था? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठकर शासन कर जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे अधीन न कर दूं। फिर जब दाऊद ने उसे प्रभु कहा तो वह उसका बेटा कैसे हो सकता है?
उत्तर में कोई भी उससे कुछ नहीं कह सका और न ही उस दिन के बाद किसी को उससे कुछ और पूछने का साहस ही हुआ। मत्ती अध्याय 23। यीशु ने फिर अपने शिष्यों और भीड़ से कहा, उसने कहा,
यहूदी धर्मशास्त्री और फरीसी मूसा के विधान की व्याख्या के अधिकारी हैं, इसलिए जो कुछ वे कहें उस पर चलना और उसका पालन करना, किंतु जो वे करते हैं वह मत करना। मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि वे बस कहते हैं पर करते नहीं हैं। वे लोगों के कंधों पर इतना बोझ लाद देते हैं कि वे उसे उठाकर चल ही ना सकें, और लोगों पर दबाव डालते हैं कि वे उसे लेकर चलें, किंतु वे स्वयं उनमें से किसी पर भी चलने के लिए पांव तक नहीं हिलाते। वे अच्छे कर्म इसलिए करते हैं कि लोग उन्हें देखें। वास्तव में वे अपने ताबीजों और पोशाकों की झालरों को इसलिए बड़े से बड़ा करते रहते हैं ताकि लोग उन्हें धर्मात्मा समझें। वे उत्सवों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पाना चाहते हैं। आराधनालयों में उन्हें प्रमुख आसन चाहिए। बाजारों में वे आदर के साथ नमस्कार कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग उन्हें रब्बी कहकर संबोधित करें। किंतु तुम लोगों से अपने आप को रब्बी मत कहलवाना, क्योंकि तुम्हारा सच्चा गुरु तो बस एक है और तुम सब केवल भाई बहन हो। धरती पर लोगों को तुम अपने में से किसी को भी पिता मत कहने देना, क्योंकि तुम्हारा पिता तो बस एक ही है और वह स्वर्ग में है। न ही लोगों को तुम अपने को स्वामी कहने देना, क्योंकि तुम्हारा स्वामी तो बस एक ही है और वह मसीह है। तुम में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होगा जो तुम्हारा सेवक बनेगा। जो अपने आप को उठाएगा उसे नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा बनाएगा उसे उठाया जाएगा। अरे कपटी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है। तुम लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो तुम स्वयं उसमें प्रवेश करते हो और न ही उनको जाने देते हो जो प्रवेश के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अरे कपटी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है। तुम किसी को अपने पंथ में लाने के लिए धरती और समुद्र पार कर जाते हो, और जब वह तुम्हारे पंथ में आ जाता है तो तुम उसे अपने से भी दुगना नरक का पात्र बना देते हो। अरे अंधे रहनुमाओं, तुम्हें धिक्कार है जो कहते हो, यदि कोई मंदिर की सौगंध खाता है तो उसे उस शपथ को रखना आवश्यक नहीं है, किंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो उसे उस शपथ का पालन आवश्यक है। अरे अंधे मूर्खों, बड़ा कौन है, मंदिर का सोना या वह मंदिर जिसने उस सोने को पवित्र बनाया? तुम यह भी कहते हो, यदि कोई वेदी की सौगंध खाता है तो कुछ नहीं, किंतु यदि कोई वेदी पर रखे चढ़ावे की सौगंध खाता है तो वह अपनी सौगंध से बंधा है। अरे अंधों, कौन बड़ा है, वेदी पर रखा चढ़ावा या वह वेदी जिससे वह चढ़ावा पवित्र बनता है? इसलिए यदि कोई वेदी की शपथ लेता है तो वह वेदी के साथ वेदी पर जो रखा है उस सब की भी शपथ लेता है। वह जो मंदिर है उसकी भी शपथ लेता है। वह मंदिर के साथ जो मंदिर के भीतर है उसकी भी शपथ लेता है। और वह जो स्वर्ग की शपथ लेता है वह परमेश्वर के सिंहासन के साथ उस सिंहासन पर विराजमान है उसकी भी शपथ लेता है। अरे कपटी यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हारा जो कुछ है तुम उसका दसवां भाग, यहाँ तक कि अपने पुदीने सौंफ और जीरे तक के दसवें भाग को परमेश्वर को देते हो, फिर भी तुम व्यवस्था की महत्वपूर्ण बातों यानी न्याय, दया और विश्वास का तिरस्कार करते हो। तुम्हें उन बातों की उपेक्षा किए बिना इनका पालन करना चाहिए था। ओ अंधे रहनुमाओं, तुम अपने पानी से मच्छर तो छानते हो पर ऊंट को निगल जाते हो। अरे कपटी यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है। तुम अपनी कटोरियां और थालियां बाहर से तो धोकर साफ करते हो पर उनके भीतर जो तुमने छल, कपट या अपने लिए रियासत में पाया है भरा है। अरे अंधे फरीसियों, पहले अपने प्याले को भीतर से मांजो ताकि भीतर के साथ वह बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। अरे कपटी यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है। तुम लिपिपुति समाधि के समान हो जो बाहर से तो सुंदर दिखती हैं, किंतु भीतर से मरे हुओं की हड्डियों और हर तरह की अपवित्रता से भरी होती हैं। ऐसे ही तुम बाहर से तो धर्मात्मा दिखाई देते हो किंतु भीतर से छल, कपट और बुराई से भरे हुए हो। अरे कपटी यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम नबियों के लिए स्मारक बनाते हो और धर्मात्माओं की कब्रों को सजाते हो और कहते हो कि यदि तुम अपने पूर्वजों के समय में होते तो नबियों को मारने में उनका हाथ नहीं बटाते। मतलब यह कि तुम मानते हो कि तुम उनकी संतान हो जो नबियों के हत्यारे थे। सो जो तुम्हारे पुरखों ने शुरू किया उसे पूरा करो। अरे सांपों और नागों की संतानों, तुम कैसे सोचते हो कि तुम नरक भोगने से बच जाओगे? इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारे पास नबियों, बुद्धिमानों और गुरुओं को भेज रहा हूँ। तुम उनमें से बहुतों को मार डालोगे और बहुतों को क्रूस पर चढ़ाओगे। कुछ एक को तुम अपनी आराधनालयों में कोड़े लगवाओगे और एक नगर से दूसरे नगर उनका पीछा करते फिरोगे। परिणाम स्वरूप निर्दोष हाबील से लेकर बिरिक्याह के बेटे जकर्याह तक, जिसे तुमने मंदिर के गर्भगृह और वेदी के बीच मार डाला था, हर निरपराध व्यक्ति की हत्या का दंड तुम पर होगा। मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, इस सब कुछ के लिए इस पीढ़ी के लोगों को दंड भोगना होगा। ओ यरूशलेम, यरूशलेम, तू वह है जो नबियों की हत्या करता है और परमेश्वर के भेजे दूतों को पत्थर मारता है। मैंने कितनी बार चाहा है कि जैसे कोई मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा कर लेती है, वैसे ही मैं तेरे बच्चों को एकत्र कर लूं, किंतु तुम लोगों ने नहीं चाहा। अब तेरा मंदिर पूरी तरह उजड़ जाएगा। सचमुच मैं तुम्हें बताता हूं, तुम मुझे तब तक फिर नहीं देखोगे जब तक तुम यह नहीं कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आ रहा है।
मत्ती अध्याय 24। मंदिर को छोड़कर यीशु जब वहां से होकर जा रहा था तो उसके शिष्य उसे मंदिर के भवन दिखाने उसके पास आए। इस पर यीशु ने उनसे कहा,
तुम इन भवनों को सीधे खड़े देख रहे हो, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर टिका नहीं रहेगा, एक एक पत्थर गिरा दिया जाएगा।
यीशु जब जैतून पर्वत पर बैठा था तो एकांत में उसके शिष्य उसके पास आए और बोले,
हमें बता यह कब घटेगा, जब तू वापस आएगा और इस संसार का अंत होने को होगा तो कैसे संकेत प्रकट होंगे?
उत्तर में यीशु ने उनसे कहा,
सावधान, तुम लोगों को कोई छलने न पाए। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत से हैं जो मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और वे बहुतों को छलेंगे। तुम पास के युद्धों की बातें या दूर के युद्धों की अफवाहें सुनोगे, पर देखो तुम घबराना मत, ऐसा तो होगा ही किंतु अभी अंत नहीं आया है। हर एक जाति दूसरी जाति के विरोध में और एक राज्य दूसरे राज्य के विरोध में खड़ा होगा। अकाल पड़ेंगे, हर कहीं भूचाल आएंगे, किंतु ये सब बातें तो केवल पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। उस समय वे तुम्हें दंड दिलाने के लिए पकड़वाएंगे और वे तुम्हें मरवा डालेंगे, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो। सभी जातियों के लोग तुमसे घृणा करेंगे। उस समय बहुत से लोगों का मोह टूट जाएगा और विश्वास डिग जाएगा। वे एक दूसरे को अधिकारियों के हाथों सौंपेंगे और परस्पर घृणा करेंगे। बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और लोगों को ठगेंगे, क्योंकि अधार्मिकता बढ़ जाएगी, सो बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। किंतु जो अंत तक टिका रहेगा उसका उद्धार होगा। स्वर्ग के राज्य का यह सुसमाचार समस्त विश्व में सभी जातियों को साक्षी के रूप में सुनाया जाएगा और तभी अंत आएगा। इसलिए जब तुम लोग भयानक विनाशकारी वस्तु को, जिसका उल्लेख दानियेल नबी द्वारा किया गया था, मंदिर के पवित्र स्थान पर खड़े देखो, पढ़ने वाला स्वयं समझ ले कि इसका अर्थ क्या है। तब जो लोग यहूदिया में हों उन्हें पहाड़ों पर भाग जाना चाहिए। जो अपने घर की छत पर हों वह घर से बाहर कुछ भी ले जाने के लिए नीचे न उतरें, और जो बाहर खेतों में काम कर रहे हों वह पीछे मुड़कर अपने वस्त्र तक न लें। उन स्त्रियों के लिए जो गर्भवती होंगी या जिनके दूध पीते बच्चे होंगे, वे दिन बहुत कष्ट के होंगे। प्रार्थना करो कि तुम्हें सर्दियों के दिनों या सप्त के दिन भागना न पड़े। उन दिनों ऐसी विपत्ति आएगी जैसी जब से परमेश्वर ने यह सृष्टि रची है आज तक कभी नहीं आई और न कभी आएगी। और यदि परमेश्वर ने उन दिनों को घटाने का निश्चय न कर लिया होता तो कोई भी न बचता, किंतु अपने चुने हुओं के कारण वह उन दिनों को कम करेगा। उन दिनों यदि कोई तुम लोगों से कहे, देखो यह रहा मसीह या वह रहा मसीह, तो उसका विश्वास मत करना। मैं यह कहता हूं क्योंकि कपटी मसीह और कपटी नबी खड़े होंगे और ऐसे ऐसे आश्चर्य चिन्ह दिखाएंगे और अद्भुत काम करेंगे कि बन पड़े तो वह चुने हुओं को भी चकमा दे दे। देखो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, सो यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो वहां मत जाना, और यदि वे कहें देखो वह उन कमरों के भीतर छुपा है तो उनका विश्वास मत करना। मैं यह कह रहा हूं क्योंकि जैसे बिजली पूरब में शुरू होकर पश्चिम के आकाश तक कौंध जाती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी प्रकट होगा। जहां कहीं लाश होगी वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों जो मुसीबत पड़ेगी उसके तुरंत बाद सूरज काला पड़ जाएगा, चांद से उसकी चांदनी नहीं छिटकेगी, आसमान से तारे गिरने लगेंगे और आकाश में महाशक्तियां झकझोर दी जाएंगी। उस समय मनुष्य के पुत्र के आने का संकेत आकाश में प्रकट होगा। तब पृथ्वी पर सभी जातियों के लोग विलाप करेंगे और वे मनुष्य के पुत्र को शक्ति और महिमा के साथ स्वर्ग के बादलों में प्रकट होते देखेंगे। वह ऊंचे स्वर की तुरही के साथ अपने दूतों को भेजेगा, फिर वे स्वर्ग के एक छोर से दूसरे छोर तक सब कहीं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो, जैसे उसकी टहनियां कोमल हो जाती हैं और कोंपलें फूटने लगती हैं, तुम लोग जान जाते हो कि गर्मियां आने को है। वैसे ही जब तुम यह सब घटित होते हुए देखो तो समझ जाना कि वह समय निकट आ पहुंचा है, बल्कि ठीक द्वार तक। मैं तुम लोगों से सत्य कहता हूं कि इस पीढ़ी के लोगों के जीते जी ही ये सब बातें घटेंगी। चाहे धरती और आकाश मिट जाए किंतु मेरा वचन कभी नहीं मिटेगा। उस दिन या उस घड़ी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, न स्वर्ग में दूत और न स्वयं पुत्र, केवल परम पिता जानता है। जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वैसे ही जैसे लोग जल प्रलय आने से पहले के दिनों तक खाते पीते रहे, ब्याह शादियां रचाते रहे जब तक नूह नाव पर नहीं चढ़ा, उन्हें तब तक कुछ पता नहीं चला जब तक जल प्रलय न आ गया और उन सब को बहा नहीं ले गया, मनुष्य के पुत्र का आना भी ऐसा ही होगा। उस समय खेत में काम करते दो आदमियों में से एक को उठा लिया जाएगा और एक को वहीं छोड़ दिया जाएगा। चक्की पीसती दो औरतों में से एक उठा ली जाएगी और एक वहीं पीछे छोड़ दी जाएगी। सो तुम लोग सावधान रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा स्वामी कब आ जाए। याद रखो, यदि घर का स्वामी जानता कि रात को किस घड़ी चोर आ जाएगा, तो वह सजग रहता और चोर को अपने घर में सेंध नहीं लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, तुम जब उसकी सोच भी नहीं रहे होगे, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तुम सोचो, वह भरोसेमंद सेवक कौन है जिसे स्वामी ने अपने घर के सेवकों के ऊपर उचित समय उन्हें उनका भोजन देने के लिए लगाया है। धन्य है वह सेवक जिसे उसका स्वामी जब आता है तो कर्तव्य करते पाता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, वह स्वामी उसे अपनी समूची संपत्ति का अधिकारी बना देगा। दूसरी तरफ सोचो, एक बुरा दास है जो अपने मन में कहता है, मेरा स्वामी बहुत दिनों से वापस नहीं आ रहा है। सो वह अपने साथी दासों से मारपीट करने लगता है और शराबियों के साथ खाना पीना शुरू कर देता है। तो उसका स्वामी ऐसे दिन आ जाएगा जिस दिन वह उसके आने की सोचता तक नहीं और जिसका उसे पता तक नहीं, और उसका स्वामी उसे बुरी तरह दंड देगा और कपटियों के बीच उसका स्थान निश्चित करेगा, जहां बस लोग रोते होंगे और दांत पीसते होंगे।
मत्ती अध्याय 25।
उस दिन स्वर्ग का राज्य उन 10 कन्याओं के समान होगा जो मशालें लेकर दूल्हे से मिलने निकली। उनमें से 5 लापरवाह थीं और 5 चौकस। पांचों लापरवाह कन्याओं ने अपनी मशालें तो ले लीं, पर उनके साथ तेल नहीं लिया। उधर चौकस कन्याओं ने अपनी मशालों के साथ कुप्पियों में तेल भी ले लिया, क्योंकि दूल्हे को आने में देर हो रही थी। सभी कन्याएं ऊंघने लगीं और पड़कर सो गईं। पर आधी रात धूम मची, आहा, दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने बाहर चलो। उसी क्षण वे सभी कन्याएं उठ खड़ी हुईं और अपनी मशालें तैयार की। लापरवाह कन्याओं ने चौकस कन्याओं से कहा, हमें अपना थोड़ा तेल दे दो, हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। उत्तर में उन चौकस कन्याओं ने कहा, नहीं, हम नहीं दे सकती, क्योंकि फिर न ही यह हमारे लिए काफी होगा और न ही तुम्हारे लिए। सो तुम तेल बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने जा ही रही थीं कि दूल्हा आ पहुंचा। सो वे कन्याएं जो तैयार थीं उसके साथ विवाह के उत्सव में भीतर चली गईं और फिर किसी ने द्वार बंद कर दिया। आखिरकार वे बाकी की कन्याएं भी गईं और उन्होंने कहा, स्वामी, हे स्वामी, द्वार खोलो, हमें भीतर आने दो। किंतु उसने उत्तर देते हुए कहा, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। सो सावधान रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को जब मनुष्य का पुत्र लौटेगा। स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान होगा जिसने यात्रा पर जाते हुए अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति पर अधिकारी बनाया। उसने एक को चांदी के सिक्कों से भरी 5 थैलियां दी, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। वह हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार देकर यात्रा पर निकल पड़ा। जिसे चांदी के सिक्कों से भरी 5 थैलियां मिली थीं, उसने तुरंत उस पैसे को काम में लगा दिया और 5 थैलियां और कमा ली। ऐसे ही जिसे 2 थैलियां मिली थीं, उसने भी 2 और कमा ली। पर जिसे 1 मिली थी, उसने कहीं जाकर धरती में एक गड्ढा खोदा और अपने स्वामी के धन को गाड़ दिया। बहुत समय बीत जाने के बाद उन दासों का स्वामी लौटा और हर एक से लेखा जोखा लेने लगा। वह व्यक्ति जिसे चांदी के सिक्कों की 5 थैलियां मिली थीं, अपने स्वामी के पास गया और चांदी की 5 और थैलियां ले जाकर उससे बोला, स्वामी, तुमने मुझे 5 थैलियां सौंपी थीं, चांदी के सिक्कों की ये 5 थैलियां और हैं जो मैंने कमाई हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, तुम भरोसे के लायक अच्छे दास हो, थोड़ी सी रकम के संबंध में तुम विश्वास पात्र रहे, मैं तुम्हें और अधिक का अधिकार दूंगा, भीतर जा और अपने स्वामी की प्रसन्नता में शामिल हो। फिर जिसे चांदी के सिक्कों की 2 थैलियां मिली थीं, अपने स्वामी के पास आया और बोला, स्वामी तूने मुझे चांदी की दो थैलियां सौंपी थीं, चांदी के सिक्कों की ये दो थैलियां और हैं जो मैंने कमाई हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, तुम भरोसे के लायक अच्छे दास हो, थोड़ी सी रकम के संबंध में तुम विश्वास पात्र रहे, मैं तुम्हें और अधिक का अधिकार दूंगा, भीतर जा और अपने स्वामी की प्रसन्नता में शामिल हो। फिर वह जिसे चांदी की एक थैली मिली थी अपने स्वामी के पास आया और बोला, स्वामी मैं जानता हूं तू बहुत कठोर व्यक्ति है, तू वहां काटता है जहां तूने बोया नहीं है और जहां तूने कोई बीज नहीं डाला वहां फसल बटोरता है, सो मैं डर गया था, इसलिए मैंने जाकर चांदी के सिक्कों की थैली को धरती में गाड़ दिया, यह ले जो तेरा है यह रहा, ले लो। उत्तर में उसके स्वामी ने उससे कहा, तू एक बुरा और आलसी दास है, तू जानता है कि मैं बिन बोए काटता हूं और जहां मैंने बीज नहीं बोए वहां से फसल बटोरता हूं, तो तुझे मेरा धन साहूकारों के पास जमा करा देना चाहिए था, फिर जब मैं आता तो जो मेरा था सूद के साथ ले लेता, इसलिए इससे चांदी के सिक्कों की यह थैली ले लो और जिसके पास चांदी के सिक्कों की 10 थैलियां हैं इसे उसी को दे दो, क्योंकि हर उस व्यक्ति को जिसने जो कुछ उसके पास था उसका सही उपयोग किया और अधिक दिया जाएगा और जितनी उसे आवश्यकता है वह उससे अधिक पाएगा, किंतु उससे जिसने जो कुछ उसके पास था उसका सही उपयोग नहीं किया सब कुछ छीन लिया जाएगा, सो उस बेकार के दास को बाहर अंधेरे में धकेल दो जहां लोग रोएंगे और अपने दांत पीसेंगे। मनुष्य का पुत्र जब अपनी स्वर्गिक महिमा में अपने सभी दूतों समेत अपने शानदार सिंहासन पर बैठेगा तो सभी जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी और वह एक को दूसरे से वैसे ही अलग करेगा जैसे एक गड़रिया अपनी बकरियों से भेड़ों को अलग करता है, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर रखेगा और बकरियों को बाईं ओर। फिर वह राजा जो उसके दाहिनी ओर है उनसे कहेगा, मेरे पिता से आशीष पाए लोगों, आओ और जो राज्य तुम्हारे लिए जगत की रचना से पहले तैयार किया गया है उसका अधिकार लो, यह राज्य तुम्हारा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे कुछ खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे कुछ पीने को दिया, मैं पास से जाता हुआ कोई अनजाना था और तुम मुझे भीतर ले गए, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सेवा की, मैं बंदी था और तुम मेरे पास आए। फिर उत्तर में धर्मी लोग उससे पूछेंगे, प्रभु हमने तुझे कब भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा और पीने को दिया, तुझे हमने कब पास से जाता हुआ कोई अनजाना देखा और भीतर ले गए या बिना कपड़ों के देखकर तुझे कपड़े पहनाए, और हमने कब तुझे बीमार या बंदी देखा और तेरे पास आए। फिर राजा उत्तर में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं, जब कभी तुमने मेरे भोले भाले भाइयों में से किसी एक के लिए भी कुछ किया तो वह तुमने मेरे ही लिए किया। फिर वह राजा अपने बाईं ओर वालों से कहेगा, अरे अभागों मेरे पास से चले जाओ, और जो आग शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है उस अनंत आग में जा गिरो, यही तुम्हारा दंड है, क्योंकि मैं भूखा था पर तुमने मुझे खाने को कुछ नहीं दिया, मैं अजनबी था पर तुम मुझे भीतर नहीं ले गए, मैं कपड़ों के बिना नंगा था पर तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी था पर तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा। फिर वे भी उत्तर में उससे पूछेंगे, प्रभु हमने तुझे भूखा या प्यासा या अनजाना या बिना कपड़ों के नंगा या बीमार या बंदी कब देखा और तेरी सेवा नहीं की। फिर वह उत्तर में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, जब कभी तुमने मेरे इन भोले भाले अनुयायियों में से किसी एक के लिए भी कुछ करने में लापरवाही बरती तो वह तुमने मेरे लिए ही कुछ करने में लापरवाही बरती। फिर ये बुरे लोग अनंत दंड पाएंगे और धर्मी लोग अनंत जीवन में चले जाएंगे।
मत्ती अध्याय 26। इन सब बातों के कह चुकने के बाद यीशु अपने शिष्यों से बोला,
तुम लोग जानते हो कि 2 दिन बाद फसह पर्व है और मनुष्य का पुत्र शत्रुओं के हाथों क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाने वाला है।
तब प्रमुख याजक और बुजुर्ग यहूदी नेता कैफा नाम के प्रमुख याजक के भवन के आंगन में इकट्ठे हुए और उन्होंने किसी तरकीब से यीशु को पकड़ने और मार डालने की योजना बनाई। फिर भी वे कह रहे थे,
हमें यह पर्व के दिनों में नहीं करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है लोग कोई दंगा फसाद करें।
यीशु जब बैतनियाह में शमौन कोढ़ी के घर पर था, तभी एक स्त्री सफेद चिकने स्फटिक के पात्र में बहुत कीमती इत्र भर कर लाई और उसे उसके सिर पर उड़ेल दिया। उस समय वह पटरे पर झुका बैठा था। जब उसके शिष्यों ने यह देखा तो वे क्रोध में भर कर बोले,
इत्र की ऐसी बर्बादी क्यों की गई? यह इत्र अच्छे दामों में बेचा जा सकता था और फिर उस धन को दिल दुखियों में बांटा जा सकता था।
यीशु जान गया कि वे क्या कह रहे हैं, सो उनसे बोला,
तुम इस स्त्री को क्यों तंग कर रहे हो? उसने तो मेरे लिए एक सुंदर काम किया है, क्योंकि दीन दुखी तो सदा तुम्हारे पास रहेंगे पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। उसने मेरे शरीर पर यह सुगंधित इत्र छिड़क कर मेरे गाड़े जाने की तैयारी की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, समस्त संसार में जहाँ कहीं भी सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया जाएगा, वहीं इसकी याद में जो कुछ इसने किया है उसकी चर्चा होगी।
तब यहूदा इस्करियोती, जो उसके 12 शिष्यों में से एक था, प्रधान याजकों के पास गया और उनसे बोला,
यदि मैं यीशु को तुम्हें पकड़वा दूं, तो तुम लोग मुझे क्या दोगे?
तब उन्होंने यहूदा को चांदी के 30 सिक्के देने की इच्छा जाहिर की। उसी समय से यहूदा यीशु को धोखे से पकड़वाने की ताक में रहने लगा। बिना खमीर की रोटी के उत्सव के पहले दिन यीशु के शिष्यों ने पास आकर पूछा,
तू क्या चाहता है कि हम तेरे खाने के लिए फसह भोज की तैयारी कहाँ जाकर करें?
उसने कहा,
गांव में उस व्यक्ति के पास जाओ और उससे कहो कि गुरु ने कहा है, मेरी निश्चित घड़ी निकट है, मैं तेरे घर अपने शिष्यों के साथ फसह पर्व मनाने वाला हूँ।
फिर शिष्यों ने वैसा ही किया जैसा यीशु ने बताया था और फसह पर्व की तैयारी की। दिन ढले यीशु अपने 12 शिष्यों के साथ पटरे पर झुका बैठा था, तभी उनके भोजन करते वह बोला,
मैं सच कहता हूँ, तुम में से एक मुझे धोखे से पकड़वाएगा।
वे बहुत दुखी हुए और उनमें से प्रत्येक उससे पूछने लगा,
प्रभु वहाँ मैं तो नहीं हूँ, बता क्या मैं हूँ?
तब यीशु ने उत्तर दिया,
वही जो मेरे साथ एक थाली में खाता है मुझे धोखे से पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जाएगा ही जैसा कि उसके बारे में शास्त्र में लिखा है, पर उस व्यक्ति को धिक्कार है जिस व्यक्ति के द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जा रहा है। उस व्यक्ति के लिए कितना अच्छा होता कि उसका जन्म ही ना हुआ होता।
तब उसे धोखे से पकड़वाने वाला यहूदा बोल उठा,
हे रब्बी, वह मैं नहीं हूँ, क्या मैं हूँ?
यीशु ने उससे कहा,
हाँ ऐसा ही है जैसा तूने कहा है।
जब वे खाना खा ही रहे थे, यीशु ने रोटी ली, उसे आशीष दी और फिर तोड़ा, फिर उसे शिष्यों को देते हुए वह बोला,
लो इसे खाओ, यह मेरी देह है।
फिर उसने प्याला उठाया और धन्यवाद देने के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा,
तुम सब इसे थोड़ा थोड़ा पियो, क्योंकि यह मेरा लहू है जो एक नए वाचा की स्थापना करता है। यह बहुत लोगों के लिए बहाया जा रहा है ताकि उनके पापों को क्षमा करना संभव हो सके। मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं उस दिन तक दाखरस को नहीं चखूंगा जब तक अपने परम पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नया दाखरस न पी लूं।
फिर वे फसह का भजन गाकर जैतून पर्वत पर चले गए। फिर यीशु ने उनसे कहा,
आज रात तुम सबका मुझमें से विश्वास डिग जाएगा। क्योंकि शास्त्र में लिखा है, मैं गड़ेरियों को मारूंगा और रेवड़ की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, पर फिर से जी उठने के बाद मैं तुमसे पहले ही गलील चला जाऊंगा।
पतरस ने उत्तर दिया,
चाहे सब तुझ में से विश्वास खो दे, किंतु मैं कभी नहीं खोऊंगा।
यीशु ने उससे कहा,
मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, आज इसी रात मुर्गे के बांक देने से पहले तू 3 बार मुझे नकार चुकेगा।
तब पतरस ने उससे कहा,
यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी तुझे मैं कभी नहीं नकारूंगा।
बाकी सब शिष्यों ने भी वही कहा। फिर यीशु उनके साथ उस स्थान पर आया जो गतसमने कहलाता था, और उसने अपने शिष्यों से कहा,
जब तक मैं वहां जाऊं और प्रार्थना करूं, तुम यहीं बैठो।
फिर यीशु पतरस और जब्दी के 2 बेटों को अपने साथ ले गया और दुख तथा व्याकुलता अनुभव करने लगा। फिर उसने उनसे कहा,
मेरा मन बहुत दुखी है, जैसे मेरे प्राण निकल जाएंगे। तुम मेरे साथ यहीं ठहरो और सावधान रहो।
फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वह धरती पर झुककर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा,
हे मेरे परम पिता, यदि हो सके तो यातना का यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही कर।
फिर वह अपने शिष्यों के पास गया और उन्हें सोता पाया। वह पतरस से बोला,
सो तुम लोग मेरे साथ 1 घड़ी भी नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। तुम्हारा मन तो वही करना चाहता है जो उचित है, किंतु तुम्हारा शरीर दुर्बल है।
एक बार फिर उसने जाकर प्रार्थना की और कहा,
हे मेरे परम पिता, यदि यातना का यह प्याला मेरे पिए बिना टल नहीं सकता, तो तेरी इच्छा पूरी हो।
तब वह आया और उन्हें फिर सोते पाया। वे अपनी आंखें खोले नहीं रख सके, सो वह उन्हें छोड़कर फिर गया और 3री बार भी पहले की तरह उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर यीशु अपने शिष्यों के पास गया और उनसे पूछा,
क्या तुम अब भी आराम से सो रहे हो? सुनो, समय आ चुका है जब मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों सौंपा जाने वाला है। उठो, आओ चलें। देखो, मुझे पकड़वाने वाला यह रहा।
यीशु जब बोल ही रहा था, यहूदा जो 12 शिष्यों में से एक था आया, उसके साथ तलवारों और लाठियों से लैस प्रमुख याजकों और यहूदी नेताओं की भेजी एक बड़ी भीड़ भी थी। यहूदा ने, जो उसे पकड़वाने वाला था, उन्हें एक संकेत देते हुए कहा कि जिस किसी को मैं चूमूं वही यीशु है, उसे पकड़ लो। फिर वह यीशु के पास गया और बोला,
हे गुरु।
और बस उसने यीशु को चूम लिया। यीशु ने उससे कहा,
मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर।
फिर भीड़ के लोगों ने पास जाकर यीशु को दबोच कर बंदी बना लिया। फिर जो लोग यीशु के साथ थे, उनमें से एक ने तलवार खींच ली और वार करके महायाजक के दास का कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा,
अपनी तलवार को म्यान में रखो, जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से ही मारे जाएंगे। क्या तुम नहीं सोचते कि मैं अपने परम पिता को बुला सकता हूँ और वह तुरंत स्वर्ग दूतों की 12 सेनाओं से भी अधिक मेरे पास भेज देगा? किंतु यदि मैं ऐसा करूं तो शास्त्रों की लिखी यह कैसे पूरी होगी कि सब कुछ ऐसे ही होना है।
उसी समय यीशु ने भीड़ से कहा,
तुम तलवारों लाठियों समेत मुझे पकड़ने ऐसे क्यों आए हो, जैसे किसी चोर को पकड़ने आते हैं? मैं हर दिन मंदिर में बैठा उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, किंतु यह सब कुछ घटा ताकि भविष्यवक्ताओं की लिखी पूरी हो।
फिर उसके सभी शिष्य उसे छोड़कर भाग खड़े हुए। जिन्होंने यीशु को पकड़ा था, वे उसे कैफा नामक महायाजक के सामने ले गए। वहां यहूदी धर्मशास्त्री और बुजुर्ग यहूदी नेता भी इकट्ठे हुए। पतरस उससे दूर दूर रहते उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक चला गया और फिर नतीजा देखने वहां पहरेदारों के साथ बैठ गया। महायाजक समूची यहूदी महासभा समेत यीशु को मृत्यु दंड देने के लिए उसके विरोध में कोई
अभियोग ढूंढने का यत्न कर रहे थे पर ढूंढ नहीं पाए। यद्यपि बहुत से झूठे गवाहों ने आगे बढ़कर झूठ बोला, अंत में दो व्यक्ति आगे आए और बोले,
इसने कहा था कि मैं परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर सकता हूँ और 3 दिन में उसे फिर बना सकता हूँ।
फिर महायाजक ने खड़े होकर यीशु से पूछा,
क्या उत्तर में तुझे कुछ नहीं कहना कि वे लोग तेरे विरोध में यह क्या गवाही दे रहे हैं?
किंतु यीशु चुप रहा। फिर महायाजक ने उससे पूछा,
मैं तुझे साक्षात परमेश्वर की शपथ देता हूँ, हमें बता, क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है?
यीशु ने उत्तर दिया,
हाँ मैं हूँ, किंतु मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम मनुष्य के पुत्र को उस परम शक्तिशाली की दाहिनी ओर बैठे और स्वर्ग के बादलों पर आते शीघ्र ही देखोगे।
महायाजक यह सुनकर इतना क्रोधित हुआ कि वह अपने कपड़े फाड़ते हुए बोला,
इसने जो बातें कही हैं वे परमेश्वर की निंदा में जाती हैं। अब हमें और गवाह नहीं चाहिए, तुम सब ने परमेश्वर के विरोध में कहते इसे सुना है, तुम लोग क्या सोचते हो?
उत्तर में वे बोले,
यह अपराधी है, इसे मर जाना चाहिए।
फिर उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे, कुछ ने थप्पड़ मारे और कहा,
हे मसीह, भजवाणी कर कि वह कौन है जिसने तुझे मारा।
पतरस अभी नीचे आंगन में ही बाहर बैठा था कि एक दासी उसके पास आई और बोली,
तू भी तो उसी गलीली यीशु के साथ था।
किंतु सबके सामने पतरस मुकर गया। उसने कहा,
मुझे पता नहीं तू क्या कह रही है।
फिर वह ड्योढ़ी तक गया ही था कि एक दूसरी स्त्री ने उसे देखा और जो लोग वहाँ थे उनसे बोली,
यह व्यक्ति यीशु नासरी के साथ था।
एक बार फिर पतरस ने इनकार किया और कसम खाते हुए कहा,
मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता।
थोड़ी देर बाद वहाँ खड़े लोग पतरस के पास गए और उससे बोले,
तेरी बोली साफ बता रही है कि तू असल में उन्हीं में से एक है।
तब पतरस अपने को धिक्कारने और कसमें खाने लगा,
मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता।
तभी मुर्गे ने बांग दी। तभी पतरस को वह याद हो आया जो यीशु ने उससे कहा था,
मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे नकारेगा।
तब पतरस बाहर चला गया और फूट फूट कर रो पड़ा। मत्ती अध्याय 27। अलख सुबह सभी प्रमुख याजकों और यहूदी बुजुर्ग नेताओं ने यीशु को मरवा डालने के लिए षड्यंत्र रचा। फिर वे उसे बांध कर ले गए और राज्यपाल पिलातुस को सौंप दिया। यीशु को पकड़वाने वाले यहूदा ने जब देखा कि यीशु को दोषी ठहराया गया है तो वह बहुत पछताया और उसने प्रमुख याजकों और बुजुर्ग यहूदी नेताओं को चांदी के वे 30 सिक्के लौटा दिए। उसने कहा,
मैंने एक निरपराध व्यक्ति को मार डालने के लिए पकड़वा कर पाप किया है।
इस पर उन लोगों ने कहा,
हमें क्या, यह तेरा अपना मामला है।
इस पर यहूदा चांदी के उन सिक्कों को मंदिर के भीतर फेंक कर चला गया और फिर बाहर जाकर अपने को फांसी लगा दी। प्रमुख याजकों ने वे सिक्के उठा लिए और कहा,
हमारे नियम के अनुसार इस धन को मंदिर के कोष में रखना उचित नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल किसी को मरवाने के लिए किया गया था।
इसलिए उन्होंने उस पैसे से कुम्हार का खेत खरीदने का निर्णय किया ताकि बाहर से यरूशलेम आने वाले लोगों को मरने के बाद उसमें दफनाया जाए। इसलिए आज तक वह खेत लहू का खेत के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार परमेश्वर का भविष्यवक्ता यरमयाह के द्वारा कहा गया यह वचन पूरा हुआ।
उन्होंने चांदी के 30 सिक्के लिए वह रकम जिसे इसराइल के लोगों ने उसके लिए देना तय किया था और प्रभु के द्वारा मुझे दिए गए आदेश के अनुसार उससे कुम्हार का खेत खरीदा।
इसी बीच यीशु राज्यपाल के सामने पेश हुआ। राज्यपाल ने उससे पूछा,
क्या तू यहूदियों का राजा है?
यीशु ने कहा,
हाँ मैं हूँ।
दूसरी तरफ जब प्रमुख याजक और बुजुर्ग यहूदी नेता उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब पिलातुस ने उससे पूछा,
क्या तू नहीं सुन रहा है कि वे तुझ पर कितने आरोप लगा रहे हैं?
किंतु यीशु ने पिलातुस को किसी भी आरोप का कोई उत्तर नहीं दिया। पिलातुस को इस पर बहुत अचरज हुआ। फसह पर्व के अवसर पर राज्यपाल का रिवाज था कि वह किसी भी एक कैदी को जिसे भीड़ चाहती थी उनके लिए छोड़ दिया करता था। उसी समय बरअब्बा नाम का एक बदनाम कैदी वहाँ था। सो जब भीड़ आ जुटी तो पिलातुस ने उनसे पूछा,
तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए किसे छोड़ूं, बरअब्बा को या उस यीशु को जो मसीह कहलाता है?
पिलातुस जानता था कि उन्होंने उसे डाह के कारण पकड़वाया है। पिलातुस जब न्याय के आसन पर बैठा था तो उसकी पत्नी ने उसके पास एक संदेश भेजा,
उस सीधे सच्चे मनुष्य के साथ कुछ मत कर बैठना। मैंने उसके बारे में एक सपना देखा है जिससे आज सारे दिन मैं बेचैन रही।
किंतु प्रमुख याजकों और बुजुर्ग यहूदी नेताओं ने भीड़ को बहकाया, फुसलाया कि वह पिलातुस से बरअब्बा को छोड़ने की और यीशु को मरवा डालने की मांग करे। उत्तर में राज्यपाल ने उनसे पूछा,
मुझसे दोनों कैदियों में से तुम अपने लिए किसे छुड़वाना चाहते हो?
उन्होंने उत्तर दिया,
बरअब्बा को।
तब पिलातुस ने उनसे पूछा,
तो मैं जो मसीह कहलाता है उस यीशु का क्या करूं?
वे सब बोले,
उसे क्रूस पर चढ़ा दो।
पिलातुस ने पूछा,
क्यों, उसने क्या अपराध किया है?
किंतु वे तो और अधिक चिल्लाए,
उसे क्रूस पर चढ़ा दो।
पिलातुस ने देखा कि अब कोई लाभ नहीं बल्कि दंगा भड़कने को है, सो उसने थोड़ा पानी लिया और भीड़ के सामने अपने हाथ धोए। वह बोला,
इस व्यक्ति के खून से मेरा कोई सरोकार नहीं है, यह तुम्हारा मामला है।
उत्तर में सब लोगों ने कहा,
इसकी मौत की जवाबदेही हम और हमारे बच्चे स्वीकार करते हैं।
तब पिलातुस ने उनके लिए बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। फिर पिलातुस के सिपाही यीशु को राज्यपाल निवास के भीतर ले गए। वहाँ उसके चारों तरफ सिपाहियों की पूरी पलटन इकट्ठी हो गई। उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए और चमकीले लाल रंग के वस्त्र पहनाकर कांटों से बना एक ताज उसके सिर पर रख दिया। उसके दाहिने हाथ में एक सरकंडा थमा दिया और उसके सामने अपने घुटनों पर झुककर उसकी हंसी उड़ाते हुए बोले,
यहूदियों का राजा अमर रहे।
फिर उन्होंने उसके मुंह पर थूका, छड़ी छीन ली और उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसकी हंसी उड़ा चुके तो उसकी पोशाक उतार ली और उसे उसके अपने कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। जब वे बाहर जा ही रहे थे तो उन्हें कुरैन का रहने वाला शिमोन नामक एक व्यक्ति मिला। उन्होंने उस पर दबाव डाला कि वह यीशु का क्रूस उठाकर चले। फिर जब वे गुलगुता, जिसका अर्थ है खोपड़ी का स्थान, नामक स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने यीशु को पित्त मिली दाखरस पीने को दी, किंतु जब यीशु ने उसे चखा तो पीने से मना कर दिया। सो उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया और उसके वस्त्र पासा फेंक कर आपस में बांट लिए। इसके बाद वे वहां बैठकर उस पर पहरा देने लगे। उन्होंने उसका अभियोग पत्र लिखकर उसके सिर पर टांग दिया, यह यहूदियों का राजा यीशु है। इसी समय उसके साथ दो डाकू भी क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, एक उसके दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर। पास से जाते हुए लोग अपना सिर मटकाते हुए उसका अपमान कर रहे थे। वे कह रहे थे,
अरे मंदिर को गिराकर 3 दिन में उसे फिर से बनाने वाले अपने को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे उतरा।
ऐसे ही महायाजक, धर्मशास्त्रियों और बुजुर्ग यहूदी नेताओं के साथ उसकी यह कहकर हंसी उड़ा रहे थे,
दूसरों का उद्धार करने वाला यह अपना उद्धार नहीं कर सकता, यह इसराइल का राजा है, यह क्रूस से अभी नीचे उतरे तो हम इसे मान लें, यह परमेश्वर में विश्वास करता है, सो यदि परमेश्वर चाहे तो अब इसे बचा ले, आखिर यह तो कहता भी था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ।
उन लुटेरों ने भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी ऐसी ही हंसी उड़ाई। फिर समूची धरती पर दोपहर से 3 बजे तक अंधेरा छाया रहा। कोई 3 बजे के आसपास यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा,
एली एली लामा सबक्तनी,
अर्थात
मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
वहां खड़े लोगों में से कुछ यह सुनकर कहने लगे कि यह एलियाह को पुकार रहा है। फिर तुरंत उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर सिरके में डुबोया हुआ स्पंज एक छड़ी पर टांग कर लाया और उसे यीशु को चूसने के लिए दिया। किंतु दूसरे लोग कहते रहे कि छोड़ो, देखते हैं कि एलियाह इसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर एक बार ऊंचे स्वर में पुकार कर प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। धरती कांप उठी, चट्टाने फट पड़ी, यहाँ तक कि कब्रें खुल गईं और परमेश्वर के मरे हुए बंदों के बहुत से शरीर जी उठे। वे कब्रों से निकल आए और यीशु के जी उठने के बाद पवित्र नगर में जाकर बहुतों को दिखाई दिए। रोमी सेना नायक और यीशु पर पहरा दे रहे लोग भूचाल और वैसी ही दूसरी घटनाओं को देखकर डर गए थे। वे बोले,
यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था।
वहां बहुत सी स्त्रियां खड़ी थीं, जो दूर से देख रही थी। वे यीशु की देखभाल के लिए गलील से उसके पीछे आ रही थीं। उनमें मरियम मगदलिनी, याकूब और योसेस की माता मरियम तथा जब्दी के बेटों की माता थीं। सांझ के समय अरिमतियाह नगर से यूसुफ नाम का एक धनवान आया। वह खुद भी यीशु का अनुयायी हो गया था। यूसुफ पिलातुस के पास गया और उससे यीशु का शव मांगा। तब पिलातुस ने आज्ञा दी कि शव उसे दे दिया जाए। यूसुफ ने शव ले लिया और उसे एक नई चादर में लपेटकर अपनी निजी नई कब्र में रख दिया, जिसे उसने चट्टान में काट कर बनवाया था। फिर उसने चट्टान के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़काया और चला गया। मरियम मगदलिनी और दूसरी स्त्री मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। अगले दिन जब शुक्रवार बीत गया तो प्रमुख याजक और फरीसी पिलातुस से मिले। उन्होंने कहा,
महोदय, हमें याद है कि उस छली ने जब वह जीवित था कहा था कि 3रे दिन मैं फिर जी उठूंगा, तो आज्ञा दीजिए कि 3रे दिन तक कब्र पर चौकसी रखी जाए, जिससे ऐसा ना हो कि उसके शिष्य आकर उसका शव चुरा ले जाएं और लोगों से कहें वह मरे हुओं में से जी उठा, या दूसरा छलावा पहले छलावे से भी बुरा होगा।
पिलातुस ने उनसे कहा,
तुम पहरे के लिए सिपाही ले सकते हो, जाओ जैसी चौकसी कर सकते हो करो।
तब वे चले गए और उस पत्थर पर मुहर लगाकर और पहरेदारों को वहां बैठाकर कब्र को सुरक्षित कर दिया। मत्ती अध्याय 28। सप्त के बाद जब रविवार की सुबह पौ फट रही थी, मरियम मगदलनी और दूसरी स्त्री मरियम कब्र की जांच करने आई, क्योंकि स्वर्ग से प्रभु का एक स्वर्ग दूत वहां उतरा था। इसलिए उस समय एक बहुत बड़ा भूचाल आया। स्वर्गदूत ने वहां आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप आकाश की बिजली की तरह चमचमा रहा था और उसके वस्त्र बर्फ के जैसे उजले थे। वे सिपाही जो कब्र का पहरा दे रहे थे डर के मारे कांपने लगे और ऐसे हो गए जैसे मर गए हों। तब स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों से कहा,
डरो मत, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को खोज रही हो, जिसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। वह यहाँ नहीं है, जैसा कि उसने कहा था, वह मौत के बाद फिर जिला दिया गया है। आओ उस स्थान को देखो जहाँ वह लेटा था, और फिर तुरंत जाओ और उसके शिष्यों से कहो वह मरे हुओं में से जिला दिया गया है, और अब वह तुमसे पहले गलील को जा रहा है, तुम उसे वहीं देखोगे, जो मैंने तुमसे कहा है उसे याद रखो।
उन स्त्रियों ने तुरंत ही कब्र को छोड़ दिया। वे भय और आनंद से भर उठी थीं। फिर यीशु के शिष्यों को यह बताने के लिए वे दौड़ पड़ीं। अचानक यीशु उनसे मिला और बोला,
अरे तुम।
वे उसके पास आईं, उन्होंने उसके चरण पकड़ लिए और उसकी उपासना की। तब यीशु ने उनसे कहा,
डरो मत, मेरे बंधुओं के पास जाओ और उनसे कहो कि वे गलील के लिए रवाना हो जाएं, वहीं वे मुझे देखेंगे।
अभी वे स्त्रियां अपने रास्ते में ही थीं कि कुछ सिपाही जो पहरेदारों में थे नगर में गए और जो कुछ घटा था उन सब की सूचना प्रमुख याजकों को जा सुनाई। सो उन्होंने बुजुर्ग यहूदी नेताओं से मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सिपाहियों को बहुत सा धन देकर कहा कि वे लोगों से कहें कि यीशु के शिष्य रात को आए और जब हम सो रहे थे उसकी लाश को चुरा ले गए। यदि तुम्हारी यह बात राज्यपाल तक पहुंचती है तो हम उसे समझा लेंगे और तुम पर कोई आँच नहीं आने देंगे। पहरेदारों ने धन लेकर वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था और यह बात यहूदियों में आज तक इसी रूप में फैली हुई है। फिर 11 शिष्य गलील में उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां जाने को उनसे यीशु ने कहा था। जब उन्होंने यीशु को देखा तो उसकी उपासना की। यद्यपि कुछ के मन में संदेह था फिर यीशु ने उनके पास जाकर कहा,
स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी अधिकार मुझे सौंपे गए हैं, सो जाओ और सभी देशों के लोगों को मेरा अनुयायी बनाओ। तुम्हें यह काम परमपिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा देकर पूरा करना है। वे सभी आदेश जो मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें उन पर चलना सिखाओ और याद रखो, इस सृष्टि के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा।